दोस्तों फिर से अमन धतरवाल आ चुके हैं द रणवीर शो पर। द रणवीर शो हिंदी के इस एपिसोड की स्पेशलिटी ये है कि हमने वाइब थोड़ी चेंज कर दी। अक्सर इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के टाइम हम एक टॉपिक के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, इस बार अमन और मैंने सिर्फ बात करी। इट्स अ न्यू अप्रोच टू पॉडकास्टिंग। इस तरह की पॉडकास्टिंग अमेरिका में होती है, पहली बार इंडिया में ट्राई कर रहे हैं। अमन धतरवाल एक कॉन्वर्सेशनलिस्ट है, एक फॉरएवर लाइफ लॉन्ग लर्नर है, बहुत कुछ सीखा है ऑलरेडी। 23 साल की उम्र में ही इनकी नॉलेज की कैपेसिटी और नॉलेज की लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और मैंने ट्राई किया कि इस पॉडकास्ट में उनके साथ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बातें करें, रिलेशनशिप्स के बारे में बातें करें और जस्ट जनरली लाइफ के बारे में बहुत सारे बातें करी। यह है अमन धतरवाल एवं बियर बाइसेप्स ऑन द रणवीर शो हिंदी। एंजॉय। अमन धतरवाल भाई, वेलकम टू TRS हिंदी अगेन। आप TRS के एक ऑल स्टार हो अभी। मेरे ऑल स्टार जो गेस्ट होते हैं वो सबसे बेस्ट कॉन्वर्सेशनलिस्ट होते हैं एंड दे आर द पीपल हु आई एंजॉय टॉकिंग टू द मोस्ट। भाई कैसे हो?
मैं एकदम बढ़िया रणवीर भाई, एंड थैंक यू यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं आप सबको भी हाई, और आई होप अपनी लाइफ में आप बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं।
ये थोड़ा सा पॉइंटलेस पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट के एंड में एक डेफिनेटली ट्विटर वर्स राउंड रहेगा जहां हम ऑडियंस के क्वेश्चंस लेंगे, बट तब तक आई थिंक कोई एजेंडा नहीं है, ऐसे ही बातें करेंगे भाई। तो मे बी माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि लाइफ में क्या चल रहा है?
लाइफ में अगर बात करें तो अभी बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो इस कोरोना पेंडेमिक के अंदर एक जिस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ वो है एजुकेशन में। हमारे जो चैनल्स हैं उनको हम एक्सपैंड कर रहे हो, तो अभी करीबन हमारे 6 चैनल हो चुके हैं जहाँ पे सभी कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री हैं, कोई भी बच्चा जाके देख सकता है। अब उसी चीज़ को और लेजिट और स्ट्रक्चर करने के लिए एक वेबसाइट पर काम किया गया है, तो वेबसाइट इज़ रेडी, बट जो होस्टिंग हो रही होगी उसकी, मतलब बच्चों को अगस्त के अंदर हम अवेलेबल करा रहे होंगे। मैं बहुत खुश हूँ अपनी वेबसाइट से देख के, ऐसे बहुत प्यारी प्यारी स्ट्रक्चर्ड वे में सबको लेक्चर्स दिख रहे होंगे। और दूसरी है एक एप्लीकेशन के ऊपर भी अभी काम कर रहे हैं, साथ में कुछ ऐसे कोर्सेज जैसे कि चाहे JEE हो गया, नीट है जिसमें फर्स्ट टाइम हम घुस रहे होंगे, JEE में आज तक बातें करते थे वो लोगों के लिए आ रही होंगी। कोडिंग डोमेन के अंदर बहुत एग्रेसिवली हम जा रहे हैं, जितने आपके कोर्सेज हैं कि बच्चों को सारे के सारे अवेलेबल होने स्टार्ट हो जाएँ। और सिमिलरली अब कुछ और 9th-10th वाले बच्चों का शुरुआत कर रहे हैं, और बीच में कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं जैसे कि कभी कभी टीचर्स जो फैकल्टीज़ होते हैं वो अलग अलग कारणों की वजह से चले जाते हैं, तो उसकी जगह फिर हमें नई फैकल्टीज़ लानी होती हैं। और बस मज़ा आ रहा है सारे काम जो भी कर रहे हैं।
आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ग्रोथ में, अगर एक
ग्रोथ में अभी
को हाईलाइट करना पड़े तो?
ग्रोथ में मेरे को सबसे बड़ा जो चैलेंज इस चैलेंज इतने कोई मेजर नहीं है, मतलब एकमात्र चैलेंज ये होता है कि किस प्रकार से, क्योंकि हम कोई कोर्स नहीं बेच रहे तो फाइनेंसेस को किस प्रकार से रखें जिससे कि हम एक्सपैंड भी कर सकें और हमारी वैल्यू है वो भी उसकी क्वालिटी नीचे ना आ जाए। पर उसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ठीक है, एक बैक ऑफ द माइंड में रहता है पर उसके इश्यूज़ नहीं आएंगे कभी भी। और सेकेंड अगर हम देखें तो वो ये कि जो सारी जो टीम है वो मोटिवेटेड रहे, काम हमारा चलता रहे, जो एवरी डे टू डे प्रोसेस है, बाकी ऐसा सच कोई चैलेंज नहीं है। मैं तो यूँ कहता हूँ अपने टीम मेंबर्स को, जब भी आप एक कोर्स बना रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये देखो मैं कल से बेहतर हूँ क्या, कल से बेहतर हूँ क्या, कल से बेहतर हूँ क्या, वही अपने आप में प्रोसेस एक गेम की तरह बन जाता है कि यार हम अपनी क्वालिटी ऊपर कैसे लेके जाएं, कुछ ऐसा जो कि और किसी को ना पता हो। और एक होता है कि यार आप जैसे मान लो नॉलेज आपको अगर बतानी है तो एक होता है आपने कोई किताब पढ़ ली, गूगल यूट्यूब से चीज़ें सीख ली और बोल दी, एक होता है आपने वो चीज़ें खुद करके देखी हैं। जब खुद करके देखोगे ना तो यहाँ से निकलेगा, और जो चीज़ यहाँ से निकलती है वो अगले के भी यहीं जाके हिट होती है, तो उसे समझ में आ जाता है। और इतना ज़्यादा डायनेमिक हो रही हैं चीज़ें कि मैंने एक कोट पढ़ा था कि द टाइम इज़ चेंजिंग सो फास्ट डैट नो बुक कैन कैच अप, कि समय इतनी जल्दी बदल रहा है कि नो टेक्स्ट बुक कैन कैच अप। तो आज के दिन सिर्फ टेक्स्ट बुक से ना सीखें, वो तो बहुत स्लो माध्यम है, उससे भी सीख लें, कभी बोर हो रहे हैं सीख लें, काफ़ी अच्छी किताबें भी हैं आपकी। पर साथ साथ में आपको ऑनलाइन काफ़ी रिसोर्सेज मिलते हैं। मुझे लगता है किताब जो आपको तीन चार दिन में पढ़ाएगी। अगर आप एक अच्छी पॉडकास्ट सुन लें, आप एक अच्छा इंटरव्यू सुन लें, आप किसी की टेड टॉक सुन लें अच्छे से, और ख़ुद के नोट्स बना लें कि यार ओके मैं पिछले 45 मिनट से ये छह चीज़ सीखाऊँ, वो छह चीज़ों का बार बार रिविजन करो, वही बेस्ट है। एक मेंटर रखने की ज़रूरत ही नहीं है, व्हेन देयर आर 100 लर्न फ्रॉम 100। किसी की कोई चीज़, एक अच्छा राइटर वो होता है जो कि अच्छा कॉपी करना जानता हो, ये एक बहुत फेमस कोट है, मैं उसे हिंदी में बोला है मैंने, एक अच्छा राइटर वो है जिसे कॉपी करना आता है। तो सिमिलरली आप लाइफ में कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको लगता है अरे यार इस व्यक्ति की वेबसाइट अच्छी है तो वहाँ से कुछ एलिमेंट उठाए, इसका ऐप अच्छा है इसका कुछ एलिमेंट, अच्छा यार ये क्रिएटर ऐसे करता है इसका ये उठा लिया, अच्छा यार इस प्रकार से हम और बेहतर, फिर आपकी खुद की उसमें अपना मॉडिफिकेशंस करें और चीज़ों को बेहतर करें और कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहें।
मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज आजकल हो गया है ईगो मैनेजमेंट और ईक्यू मैनेजमेंट। मैं ईक्यू को लेकर बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ यार। आई फील कि वी फिनिश्ड ऑफ दैट बेसिक स्केलिंग, मतलब पैसे कैसे बनाने हैं, प्रॉफिट्स कैसे लाने, वो सब अभी ख़त्म हो गया, अभी मास स्केलिंग का टाइम आ गया। मतलब हाउ डू यू गो फ्रॉम 100 हायर्स, 100 टीम मेम्बर्स टू 500 टीम मेम्बर्स टू 1000 टीम मेम्बर्स, लीडरशिप का बोझ कौन उठाएगा, लीडरशिप के प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा, एंड मोस्टली इस ट्रांजिशन फेज में जहाँ वो मेंटालिटी स्विच हो रही है, वो बहुत सारे, मतलब इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। आई एम ऑल्सो लर्निंग अबाउट पीपल डीपर यार, मतलब आपने किसी के साथ 5 साल के लिए काम किया है पर आप अभी जाकर उनके कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा सीख रहे हो, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जस्ट एवरी वन हैज़ अ डार्क साइड बट इट्स ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट। तो ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ, बट जो आपने बजटिंग की बात करी कि हाँ वो शायद थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, एग्जैक्टली चैलेंज नहीं है पर वो भी एक लाइफ का सब्जेक्ट होता है। जैसे कि हमने अभी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जो जिसकी थीम थी प्रोडक्टिविटी, आई फील कि ऐसे ही और बहुत सारे लाइफ के सब्जेक्ट्स होते हैं, बजटिंग, ईक्यू मैनेजमेंट, लीडरशिप, तो ये सारी चीज़ें
है जो आपने बोला उससे मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। मल्टीटास्किंग जो है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है और उसका इमीडिएट क्या मतलब, एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि अगर आप 100 से 500 में स्केल करना चाहते हैं तो आप अपने रोल डिफाइन कर लें कि ओके यार मेरा जो काम है वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है, आपका काम है आपका है सिर्फ टेक निभाना, आपका काम है मैनेजमेंट को देखना, आपका काम है भाई लोगों को देखो कोई दिक्कत ना हो, उनकी सैलरी वगैरह जाने में सब चीज़ टाइम पे आ रही हो, किसी के कोई कंसर्न्स हैं उनको देखना, एक व्यक्ति का काम है अच्छा ईमेल्स वगैरह, तो वो आपको टीम पे एकदम असाइन करने पड़ेंगे। आप ये नहीं रख सकते कि ये व्यक्ति 5 काम कर लेगा, मतलब आप हो सकते हैं सारे काम कर सकें पर एक सबसे बेहतरीन अपना पकड़ लें और उसी को, जैसे अगर हम उनकी बात करें शायद हेनरी फोर्ड ही नाम था आपके जो सबसे पहले फोर्ड थे जिन्होंने कार असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट निकाला था, तो मल्टीपल कार वो कैसे प्रोड्यूस करते थे, असेंबली लाइन भाई 20 लोग खड़े कर दिए उसके अंदर, एक आदमी बोल्ट लगाएगा एक आदमी स्टेयरिंग लगाएगा, हर एक का काम वही है, तो वो स्पीड में कर दिया। इसी प्रकार से एक और एक हॉस्पिटल है, मैं फिर से नाम बोल रहा हूँ, वो दिन के अंदर 300 सर्जरीज करते हैं, तो 300 एक होता है कि यार आप लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर लो, एक एक ऑपरेशन के 3-3 लाख रुपये ले लेते हैं। आप देख रहे होगे कि अगर हमारा एक फैक्ट में पड़ रहा था 2010 से पहले जो आपका जो प्रेग्नेंट वुमेन होती थी, एक होता है आपका नॉर्मल तरीका होता है आपका सी सेक्शन, तो जो सिजेरियन होता है, तो पहले सिजेरियन प्रैक्टिस बहुत कम होती थी और आज के दिन जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ा दिया, क्योंकि डॉक्टर डरा देता है अरे जी करो वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मेरे को एक चोट लगी थी, ये एक चोट है, अब ये नॉर्मल अपना एक फ्रैक्चर था जो कि अपने आप हील हो सकता था, पर घर वालों को डरा दिया और ज़बरदस्ती इसके ज़्यादा टाँके लगा दिए, काम बढ़ा दिया मेरा। तो उसी प्रकार से बोलेंगे अच्छा आपको छोटी मोटी बीमारी अपना एक्सरे भी करा लो, अपना ये भी करा लो, अपना वो भी करा लो, ये भी करा लो, क्योंकि वो एक बिजनेस मॉडल बन चुका है, एक व्यक्ति से बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। और वहीं पे जिनका मैंने आपको एग्जांपल दिया वो मास स्केलेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, कम पैसे में 300 सर्जरी कर रहे हैं। IPO निकला उनका रिसेंटली, मैं नाम निकल गया नहीं तो वो भी मैं आपको बता देता, रिसेंटली पढ़ा मैंने उनके बारे में। तो आपको अगर स्केल करना है आज के दिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपना ग्राउंड देख लें, दिस इज माई सेक्शन जिस पर मैं कमी नहीं आने दूंगा, आप बचे हुए काम ये देखें। और इनफैक्ट बड़े जो स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर भी यही होता है, जो को फाउंडर्स हैं वो अपने अपने सेक्शन देखते हैं और उसी में अपना काम करते हैं, दूसरे में नहीं देखते। बस
तो हाल ही में नहीं आई थिंक पिछले एक साल से मैं एक स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है लेवल, ठीक है। और लेवल का मोटिव है एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ऐप बनाना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोसेस को ऐप में कैसे डाल सकते, जिस तरह आपकी एडुकेशन की ऐप है, ये एक अडल्ट ट्रेनिंग और अडल्ट कोचिंग ऐप है इन अ वे, हाउ टू गेट अडल्ट लाइफ स्किल्स, मेनली फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, मेडिटेशन वगैरह। तो मेरे 2 मोटिव्स थे इस ऐप पर काम करने के लिए। पहला मोटिव था कि ऐप बनानी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. प्लस दिस इज अ न्यू बिजनेस, प्लस एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कम्युनिटी बना दी है, तो हाउ कैन वी मेक फर्दर प्रोडक्ट फॉर दैट कम्युनिटी. पर दूसरा मोटिव ये था कि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर के साथ काम करना था, और वो है हर्षिल कार्य, जिन्होंने जिनकी कंपनी है शबैंग. इट्स अ 200 करोड़ रेवेन्यू कंपनी. तो उन्होंने 0 रुपीज़ से 200 करोड़ रुपीज़ तक क्या क्या, मतलब वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या सिस्टम्स अडॉप्ट किए. तो देखो, मैं खुद MBA नहीं करने वाला, ये ऐप पर काम करना मेरे MBA की तरह था. आई फील कि बहुत बहुत सीखने को मिला, बहुत टफनेस के बारे में सीखा. बट ये मेरी लाइफ का सबसे बिजी और सबसे इंटेंस फेज हो चुका है, क्योंकि YouTube भी कर रहे हैं, अलग अलग YouTube चैनल्स बना रहे हैं, उसके साथ साथ मंकी तो है ही, मंकी को थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं, अभी ये ऐप बना रहे हैं. तो आई वेंट अ लिटिल क्रेजी बट इन अ गुड वे. जो कि आपने कहा ना कि पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा कि आपकी मम्मी को, आपके मम्मी को लगता है कि आप थोड़े से क्रेजी हो, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनलेस कभी कभी हो जाते हो. वो मैं देख रहा हूँ आजकल खुद के दिमाग में, मैं भी बहुत इमोशनलेस हो गया हूँ. इट्स वेरी फोकस्ड ऑन वर्क. और इसी पागलपन की वजह से मैं खुद के बुढ़ापे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब. आप ऐसे सोचते हो खुद के बुढ़ापे के बारे में कि हम
नहीं
कर रहे हैं?
मैं तो पता नहीं, अलग अलग थॉट्स आते हैं. जैसे रिसेंटली मैंने सोचा यार सिर्फ एक स्टार्टअप क्यों, मिनिमम 4 से 5 स्टार्टअप जरूर करेंगे, पहले ये कर लेते हैं, इसके बाद 3-4 चीज़ें और. एडवेंचर की तरह लगता है, घर बैठ के क्या करोगे. रणवीर, आपने इतने पैसे कमा लिए, आप उसे बैंक में रखो, थोड़ा स्टॉक में लगाओ, आपकी ज़िंदगी भर के खर्चे चल जाएंगे, बहुत बढ़िया, आप अच्छी लाइफ जी रहोगे. पर मज़ा उसमें थोड़ा ना, कितना घूमोगे, 5-6 महीने 2 साल के बाद मन भर जाएगा. तो असली एक्सपीरियंस तब आता है. अब अगर मैं देखूँ पिछले 1 साल में मैं क्या सीखा, बहुत सीखा. तो अगर सोचो अगले 20 साल में कितना सीख सकता हूँ, बहुत सीख सकता हूँ, तो मैं आज पे क्यों सेटल करूँ, मेरे को तो सारे एक्सपीरियंसेस लेने हैं. बात ये नहीं कि ठीक है, जैसे कि मैं जब अपना कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था, मैंने एक लग्जरी कार ले ली थी. मुझे लगता था लग्जरी कार इज एवरीथिंग यार, ये ड्रीम कार है, मर्सिडीज, ये परचेज कर लो. बहुत जल्दी रियलाइज़ किया मैं तो गाड़ी चलाता ही नहीं हूँ, मतलब बहुत कम. वो घर के सामने खड़ी रहती है, उसकी इंश्योरेंस लगती रहती है, उसका खर्चा लगता है, उस पर कुत्ता भी चढ़ के अगर सो जाता है सोसाइटी का, तो मेरे को डर लगता है यार स्क्रैच लग गए पंजों से. तो मैंने उसको निकाला साइड में, और अब मैंने अपनी एक छोटी कार रख ली है, और उसका मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं चला महीने का 300 किलोमीटर भी चला लूँ तो मतलब बहुत बड़ी बात होगी. स्टूडियो में पूरे टाइम बिल्डिंग में रहता हूँ. तो वो धीरे धीरे आप रियलाइजेशन करते हो, लोगों के साथ काम करने का जो मौका मिलता है वहाँ पे आप सीखते बहुत हो कि यार हर एक व्यक्ति की एक अपनी लाइफ है, उसके कुछ एस्पिरेशंस हैं, और सिर्फ उसके नहीं, उसके एस्पिरेशंस उसके घर वाले कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. तो आप वहाँ से सीखना स्टार्ट करते हो. मेरे को ये पता चला कि यार सिर्फ आप सैलरी के बलबूते पे नहीं रोक सकते. अगर आपके साथ एक एम्प्लॉय है जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है टीम में, जिसे हम बोलते हैं कि यार एकदम इसने डिफेंस मिड और या फिर अटैक संभाल रखा है बहुत बढ़िया तरीके से, तो आप उसके साथ पूछता हूँ मैं बैठा लेता हूँ 1.5-2 घंटे के लिए, या कभी लंच पे बाहर चले गए. अब कोरोना है तो लंच पे तो नहीं जा सकते, तो ऑफिस में ही बैठा लेता हूँ कि यार बता क्या करना है अगले 5 साल में. तो मेरा एक एडिटर था, वीडियो एडिटर, उन्होंने मुझे कहा कि यार भैया मेरे को फिल्म मेकिंग के अंदर जाना है, और ये बात है करीबन 1.5 साल पहले की. तो मैंने कहा फिल्म मेकिंग में जाना, चल ठीक है, बढ़िया यार, नाइस गुड. अभी करीबन 7-8 महीने पहले वो दोबारा बोला मुझे फिल्म मेकिंग के अंदर जाना, तो मैंने कहा चला जा. बोला नहीं, ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ कुछ कोलैबोरेशन. मैंने कहा चल हम अपनी मूवी एक बनाते हैं, तो बता क्या क्या चाहिए होगा इसके लिए. तो उसने कहा पहले तो मैं एक स्क्रिप्ट लिख के लाता हूँ पहले, ऐसे उससे पहले कुछ नहीं बताऊँगा. वो व्यक्ति जो कि पहले सिर्फ टाइमिंग में काम करता था, ऑफिस टाइमिंग में, सोया नहीं 2-3 दिन तक, क्योंकि वो स्क्रिप्ट बना रहा है. वो फुल्ली पैशनेट होके अपने स्क्रिप्ट बना रहा है. फिर मेरे पास एक लेके आया, मैंने कहा ठीक है ये ओके ओके है, पर ठीक है चलो काम करना स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर. फिर हमने उसका सेकंड बनाया, मॉडिफिकेशन थर्ड. फिर उन्होंने कहा ओके हमें न्यू कैमरा गियर लेने होंगे, वो हमने रेंट आउट किए, और हमने फिर रिक्रूट्स किए कि कौन हमारा एक्टर एक्ट्रेस बनेगी, लाइटिंग्स कहाँ से आ रही होंगी, लोकेशन कहाँ से आएगा. मेरे को समझ में आया जो काम TVF करता था वो इतना आसान नहीं, वो बहुत एक प्यारा मुश्किल काम है, आपको बहुत सारे चीज़ें देखनी होती हैं. करीबन हमें 1.5 महीने लगे उसको शूट करने में, और मैंने कंप्लीट उसको कहा कि यार आप मैनेज कर रहे हो कि आप मेरे को बस रिसोर्सेज बताओ. शूट किया, और अभी वो अपने लास्ट फेज में, ककून हमने उसका नाम दिया, वो आ रहा होगा. मैं ये तो नहीं कह रहा वो सबसे अच्छा, पर मैं यूँ कह रहा हूँ हाँ हमने शुरुआत कर दी, मतलब मुझे पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि यार किस प्रकार से हो रहा होता है. और वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है. जैसे मैंने कहा दोबारा अपने वीडियो एडिटर्स, मुझे लगता है मेरी टीम के वीडियो एडिटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ठीक है टीचर्स का अपना काम है, सबका अपना काम है, पर एडिटर्स सब चीज़ों को संभाल के रख रहे होते हैं. तो मैंने कहा यार ओके आपको ऐसा करते हैं, आप सबको अपने पास रोक के क्यों रखना चाहते हो. हर कंपनी सोचती है मेरे साथ ये 25 साल रहे तो उसकी मर्जी से रहे, तो वो बढ़िया काम करेगा. तो मैंने लोगों के 5 ईयर तक प्लान भी बना रखे. अच्छा यार तुम 3 साल मेरे साथ रहोगे, तुम ऐसा करो मैं तुम्हें ये गिफ्ट और दूंगा, फोर्थ ईयर में रहोगे ये गिफ्ट और दूंगा, 5 साल रहोगे लो तुम्हारी गाड़ी मेरी तरफ से आएगी तुम्हें नहीं खरीदनी। इस प्रकार के आप प्लान बना सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि जैसे किसी को होता है कि भाई मेरे को क्या चीज़ होता है, सिर्फ पैसा नहीं होता रिस्पेक्ट भी चाहता है, तो मैंने कहा चलो यार एक और चैनल बना लेंगे आने वाले टाइम में, अपना कंटेंट हम अपना यूज़ करते हैं हर एक के आगे, तो अपना अपना जायका तो मम्मी के फन के लिए बनाया था, मम्मी ब्लॉगिंग करती हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, मतलब महीने में 20 के करीब ब्लॉग डाल देती हूँ। और तो मैंने कहा एक अपना कॉन्टेंट चैनल बनाएंगे जिसमें आप जो 5-6 एडिटर्स जो आप इंटरेस्टेड हो, ग्राफिक डिज़ाइनर ले लो, एनिमेटर्स की हेल्प ले लो, और उसमें आप ग्रो करो, मैं आपको एक इनिशियल पुश दे दूंगा और उसके बाद आप ग्रो करो, 1-2 साल आप अपने आप को एज अ ब्रांड बनाओ, उसके बाद आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहाँ रहो मेरे साथ, या फिर आपकी मर्जी आपको अपनी खुद की एजेंसी खोलना चाहते हो, जो करना चाहते हो, तो आप खुद ही उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने की कोशिश करो। और सारा चीज़ पैसे से सॉल्व नहीं होता, काफ़ी बार बस बात करने से हो जाती हैं चीज़ें सॉल्व। तो वो चीज़ें सीखने को मिली हैं मेरे को पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर, जो मैं कॉलेज के अंदर सोच भी नहीं सका अरे ऐसी चीज़ क्यों करेंगे, पर अब देखा कि नीड पड़ती है, क्योंकि वो एम्प्लॉय एक पॉइंट के बाद काफ़ी कुछ का तो सिर्फ हर एक का, जैसे आपने कहा बहुत अलग अलग है अपने आप में इंडिविजुअल, हर एक को आप समझने की कोशिश, और क्योंकि अभी इनिशियल फेज़ ही है, जब तक आपके भाई ऐसे नहीं है कि भाई हमारे तो भाई 500-600 बंदे हो गए या भाई 200 बंदों से ऊपर जा रहे हैं, तब ठीक है आप अपनी टीम बना दो जो कि उन्हें समझ रहे हैं, एक टीम हेड वगैरह हो गया, उससे पहले तो आप हर एक को खुद टच कर सकते हैं। कुछ की रिक्वायरमेंट बस ये भैया मेरे से बात करो, मैं बस ग्रो करना चाहता हूँ लाइफ में, तो बीच में 1-2 घंटे बात कर लो, और मज़ा आ रहा है हर एक चीज़ को सीखने में, यही चल रहा है अभी लाइफ के अंदर।
अपने गिविंग मेंटालिटी के बारे में बात करें कि कीप गिविंग एंड देन द यूनिवर्स विल गिव यू, पर इसे सीखने के लिए ना मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था एट एज 22, क्योंकि तब मैं बूटस्ट्रैप कर रहा था और मेरी इनकम आ रही थी फिटनेस कोचिंग से, मतलब मैं लोगों के घर जाता था उन्हें फिटनेस ट्रेनिंग देता था, एंड मनी वॉज गुड, मनी वॉज बेटर देन अ इंजीनियरिंग जॉब, आई थिंक मुझे याद नहीं, बट इट वॉज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और जितना भी पैसा कमा रहा था आई वॉज मोस्टली स्पेंडिंग ऑन इक्विपमेंट या तभी के अर्ली सैलरीज, और मुझे तभी बजटिंग का ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मेरा इनपुट आता था कोई रिलेटिव से, तभी की गर्लफ्रेंड से, जो बोलती थी नहीं ज़्यादा स्पेंड मत कर, सेव करके रख, सेविंग्स पर ध्यान रख, एंड मतलब मेरे एक्सटीरियर से मुझे हमेशा सेल्फिश मेंटालिटी का इनपुट आता था कि नहीं सेव फॉर योरसेल्फ, पुट इन सेविंग्स, पोर्टफोलियो बनाओ, ये वो। तभी मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी थी और मैं बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन करता था, एंड आई फील कि मेडिटेशन में ना जब आप मतलब 30-40 मिनट्स तक मेडिटेशन करोगे, वो एंड में आपके मेडिटेशन के एंड में आप अंदर से बहुत काम हो जाते हो। तो कोई कोई लोग कहते हैं कि कभी मेडिटेशन में ना भगवान मेरे से बात करता है, बट आई फील कि इट्स योर ओन गट फीलिंग, आपका खुद का कॉन्शियसनेस आपसे बात कर रहा है, क्यों आपका खुद। और ये एक न्यूरो साइंटिस्ट आए थे TRS इंग्लिश पर, जिनका नाम था डॉक्टर बलान जलाल, उन्होंने भी यही बात कही कि आपके दिमाग के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लॉजिकल पार्ट होता है, एक इमोशनल पार्ट होता है। लॉजिकल पार्ट दुनिया को गेज करता है, कैलकुलेशंस करता है, और फाइनल डिसीजन आपके इमोशनल पार्ट से निकल के आती है। तो मेडिटेशन में क्या होता है, आपका लॉजिकल पार्ट थोड़ा सा शांत हो जाता है। ये स्लीप में भी होता है, ड्रीम्स के दौरान जब आपको मैसेजेस मिल जाते हैं ना कि अच्छा लाइफ में ये करो वो करो, लोगों को लगता है कि भगवान आपसे बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली आपका इमोशनल पार्ट बात कर रहा है, जिसने लॉजिकल पार्ट के अंदर देख कर कहा अच्छा ओके ये हो रहा है तो हमें ये करना चाहिए। तो मेडिटेशन के 30-40 मिनट्स के बाद भी वही होता है। तो तभी मेरा लॉजिकल पार्ट ये सोच रहा था कि यार गर्लफ्रेंड बोल रही है कि पैसे बचाओ, रिलेटिव्स बोल रहे हैं पैसे बचाओ, पर उस मेडिटेशन के एंड में मुझे एक इमेजरी दिखी, मैंने देखा कि एक बड़ा लाइट का बॉल था और उस लाइट के बॉल ने मुझे एक छोटा सा लाइट का बॉल दिया मेरे हाथों में, एंड बोला कि नाउ गिव इट आउट टू पीपल, जितना आप दोगे उतना ज़्यादा बड़ा लाइट का बॉल मैं आपको दूंगा, जस्ट हैव अ मेंटालिटी ऑफ गिविंग। तो पता नहीं क्या हो गया यार, अगले दिन उठ के ना मेरी पूरी मेंटालिटी स्विच हो गई एट एज 22, कि जस्ट मेक लाइफ अबाउट गिविंग टू द नेक्स्ट पर्सन, क्रिएटिंग मोर वेल्थ फॉर अदर्स। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बिजनेस से दूसरे लोगों को फायदा होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड मंक एंटरटेनमेंट, क्योंकि तभी टैलेंट मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्रिएटर्स को होती थी टैलेंट मैनेजमेंट और एक्टर्स को मिलती थी टैलेंट मैनेजमेंट, बट यूट्यूबर्स के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था, एंड देयर वॉज मनी टू बी मेड फॉर एवरीवन। तो वो मेंटालिटी थी, और आई फील कि उस मेंटालिटी को पूरी तरह से एम्ब्रेस करने के बाद माई लाइफ इज फुल्ली चेंज्ड, शांति से लाइफ जीता हूँ, एंड एवरी स्टेप इन बिजनेस, एवरी स्टेप इन लाइफ इज ऑल अबाउट ओके अब ये लाइट का बॉल मैं दूसरों को कैसे दे सकता हूँ। थोड़ा अगेन फुटबॉल टाइप सिनेरियो है कि पास करते रहो वो लोग गोल मारेंगे, और यही बात आपने भी करी, सो इट्स समथिंग पीपल नीड टू लर्न वेरी अर्ली इन लाइफ. अगर आप 22-23 इयर्स पर ये सीख जाओगे ना, लाइफ कीप्स गिविंग यू बिगर लाइट बॉल्स.
मेडिटेशन आपने बहुत सही कहा. इनफैक्ट मैं भी कोशिश करता हूँ, पर मैं इतना 30-40 नहीं, मतलब कभी कभी 10-10 मिनट्स का. वही जब बहुत ज्यादा एकदम से स्ट्रेस होने लग जाए, अपना बैठ के लाइट ऑफ करके ब्रीथिंग प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हो. और ये भी मैंने रिसेंटली सीखा, कुछ कुछ जगह है. मैं इनफैक्ट प्लान भी कर रहा हूँ एक जगह जाने की, यार 7 दिन वहां पे रह के हैं, देखें ये आश्रम वाला सिस्टम क्या है. लोगों तो मैंने कहा देख के आया, कुछ 7-8 दिन वहां रह के आए, कुछ प्रोग्राम्स हैं बड़े भी हैं उनके, छोटे भी ज्यादा, अभी सारे क्लोज हैं कोविड के अंदर, बाद में देख के आएंगे. इसमें वही यार मैं चीज बोलूंगा, आप इनफैक्ट जब किसी को गिव कर रहे हो, आप वैल्यू एड कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू अपने आप बन रही होगी. इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा. और दूसरा ये कि आप कितना ज्यादा चाहते हैं वो आपकी एग्रेसिवनेस पे डिपेंड करता है. आप बेसिकली अपनी स्पीड फास्ट कर सकते हैं जब आप रिस्क थोड़ा ज्यादा लेते हैं. और रिस्क को मैं रिस्क नहीं मानता, अगर आप अपने ऊपर पैसा, मैं बिटकॉइन पे थोड़ा लगा रहा हूँ यार कि सारा पैसा उठा के बिटकॉइन पर डाल दिया. वो सबकी कोई, मैं बिटकॉइन का गेंस नहीं करना चाहते, आप जरूर करें. मैं सारा पैसा ना स्टॉक में डाल रहा हूँ, मैं ना सारा पैसा रियल स्टेट पे, मैं तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ. यार मेरा एक सपना है, उसके ऊपर मैं इतना एग्रेसिव जाना चाहता हूँ. तो वो एग्रेसिव अगर आपको जाना, आप अपना वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लो. जब कॉलेज में होते थे तो वर्स्ट केस सिनेरियो होता था सड़क पे बैठ के शायद ऐसे खा रहे होंगे, रोटी नहीं मिलेगी अगर जॉब वॉब नहीं मिली तो. पर ऐसा नहीं है, आपने 12वीं पास कर रखी है, आपके पास ठीक ठाक नॉलेज है, आप अपना कहीं पे भी, अरे यार चाय की टपरी आपकी अच्छी चलती है ना, तो आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं इंजीनियर से, अगर आपको अच्छे से टपरी चलानी आती है तो. तो कोई काम छोटा नहीं है, आपको उस चीज को स्केल करना आना चाहिए. आप मेहनती व्यक्ति हो, कर लोगे. तो मैंने तो अपने वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रखे, यार अगर मैं पूरा इन एंड आउट चला गया तब भी मेरे पास पैसे का कमी नहीं होगा, मैं दोबारा उठा लूंगा जीरो से, मैं दोबारा उठा लूंगा. तो मम्मी का जैसे ही होता है, अमन यार आपको पता है एज ए क्रिएटर आप काफी पैसा कमा सकते हैं, अमन तो कोर्स नहीं बेच रहा. मैंने कहा कोई नहीं, अभी 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 मैं पुश कर सकता हूँ, मैं पुश कर सकता हूँ, करने दो. अमन आप बहुत ज्यादा ब्रांड्स को नहीं उठाते हो, उनका प्रमोशन कर दो. मैंने कहा मम्मी देखो थोड़े बहुत, वो बहुत ही ऑथेंटिक है, ठीक है, नहीं तो मैं नहीं उठाना चाहता. मान लो कोई यूनिवर्सिटी मेरे पास आ रही है पेड प्रमोशन, मैं कैसे कर दूँ. मेरा आज तक ये है कि आज तक मैंने जितने सेमिनार्स लिए इंडिया कॉलेजेस में, बहुत कम इंडिविजुअल्स होंगे, और मैं उसके लिए बहुत प्राउड हूँ. ये एज अ ब्रैगिंग नहीं, मैं बहुत प्राउड हूँ कि सारे सेमिनार्स हम फ्री लेते हैं बच्चों के लिए. करीबन 70 कॉलेज हो चुके हैं जिसमें टॉप IITs, टॉप NITs, ट्रिपल IITs, हिंदू, स्टीफन्स, SRCC, ये सारे कॉलेजेस हमने कवर किए हैं. उनके अंदर जा रखा हूँ मैं काफी, में कोरोना के अंदर ऑनलाइन लेने पड़े, 6 साल से मैं इसी के दौरान इसी में हूँ. एडमिशन किस प्रकार से होते हैं, कौन से कॉलेज ठीक है या नहीं, तो वहां जो मेरी एडवाइस है वो टोटल 100% एक्यूरेट होनी चाहिए. लेट अदर पीपल डू द प्रमोशन सो दैट मैं और अलग दिखूं. मैं उस पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 6 साल से एक नाम बनाया है, उसको मैं एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए खराब नहीं कर सकता जिसमें मेरा ही ट्रस्ट नहीं है. तो मैं कैसे बोल दूं कि जाके इसमें एडमिशन ले लो. तो वहां पे वही जो आपने कहा, आपकी फैमिली, आपके गर्लफ्रेंड आपको कहेगी क्योंकि यार आप पैसा कमा लो. नहीं, मैंने एक फुटबॉलर का पढ़ा था, और इसमें आप क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं तो हमने राइट नॉलेज दिए. आप पैसे को इसलिए मना नहीं करते क्योंकि आपको पैसा अच्छा नहीं लगता, आप पैसे को इसलिए मना करते हो क्योंकि आपको लगता है आने वाले 40 साल में आप और ज्यादा पैसा कमा सकते. अगर कोई आपको बोलता है कि मैं तो सिर्फ भले के लिए करना चाहता हूँ, तो भाई मैं तो नहीं मानूंगा. आप ये कह सकते हो कि जब मैं यार 1000 लोगों को पढ़ा सकता हूँ, 10,000, लाख को पढ़ा सकता हूँ, और उसको पढ़ाते मेरे को अप्रिशिएशन मिलता है, मेरे प्रोडक्ट की लोग तारीफ करते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ, सस्ते पे मैं बेच रहा हूँ या करना हूँ, ये फ्री में करना चाह रहा हूँ, वो आपको कहीं सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, आपको वो अप्रिशिएशन की फील दे रहा है, रिस्पेक्ट की फील दे रहा है, इसलिए आप कर रहे होते हो. तो और उसमें कोई गलत नहीं है, बट एटलीस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. और कोई व्यक्ति यूँ सोचे कि सिर्फ गिव गिव करना है, काफी बार है ना, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, बच्चे ये सोचते हैं कि जो पैसा कमाओ वो लगा देंगे तो क्या रखेंगे अपने पास. आप इसलिए उसे कर रहे होते हो क्योंकि आपको पता है कि यार मैं खींच दूंगा अगले 10-20 साल के अंदर, और मैं 100 रुपए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं 100 का 1000 कर सकता हूँ. That is the simple concept. मतलब brutally अगर honest होके बताएं, किसी को दोबारा कोई disrespect नहीं है, अगर कोई कर रहा था अपने आप से सबकी तो.
नहीं नहीं, जो आपने aggression की बात करी, a positive word for aggression is abundance mentality. कि मतलब दो टाइप के mentalities होते हैं, scarcity mentality कि नहीं जितने पैसे आ रहे हैं मुझे बचा के रखने, और mostly ना हमारे लास्ट 200 ईयर्स की वजह से ब्रिटिशर्स ने जो मेंटालिटी देकर रखी थी उसकी वजह से हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, उनकी ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में ज़्यादा स्कार्सिटी मेंटालिटी, फिर हमारी जनरेशन ज़्यादा अबंडेंस मेंटालिटी के तौर से सोच रही है कि अच्छा अगर लाइफ में कुछ करना है तो री इन्वेस्ट करो, ओके थोड़े रिस्क लो लाइफ में, ओके थिंक जो आपने अभी कहा कि नहीं अगर अभी पैसे को ना बोल रहे इट्स सो दैट वी कैन गेट 10x मनी लेटर, क्योंकि वो पॉजिटिव माइंडसेट रहता है कि हाँ आई विल बी एबल टू डू इट, वो आई विल बी एबल टू डू इट, सेल्फ बिलीव की वो ट्रेट आई थिंक मिसिंग थी पुराने जनरेशन में और थोड़ी थोड़ी अभी आने लगी है.
मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ मिसिंग थी, मतलब जैसे आपने कहा x का 10x हो सकता है, x का 0 भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबल सिनेरियो, पर हम वी एक्सपेक्ट कि यार सबसे बेस्ट सिनेरियो आ रहा होगा और फॉल बैक के लिए मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो कर रखा है कि यार उठ जाएंगे कहीं से उठ जाएंगे. दूसरा ये मेरे को तो इनफैक्ट लगता है हमारी पूरी पुरानी जनरेशन के अंदर ज्यादा दम था हमसे, मतलब ज्यादा करेज थी. हम थोड़े डरपोक जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है उनके पास अपॉर्चुनिटीज कम थी, एक्सपोजर कम था, पैसा भी मार्केट के अंदर नहीं था. अब आज के दिन अगर हम देखें हमारे माँ बाप थे, वो जब अपनी उनकी जॉब लगी थी आज से 25-30 साल पहले, सरकारी जॉब होती थी, प्राइवेट सेक्टर के नाम पे कुछ ज्यादा कुछ ऑप्शंस होते ही नहीं थे, या खेती होती थी गांव में, तो वो कहते थे अरे यार जॉब पकड़ लो, जॉब सब कुछ है, जॉब सब कुछ है, जॉब सब कुछ है. अगर हम ये भी देखें हमारे जो लेबर थे या जो एम्प्लॉयज थे वो किस प्रकार से उनके फेजेज आए, मैं तो तीन फेज कहूंगा. पहले एक शुरुआत एक फेज था जब आप अपने एम्प्लॉय थे, उनको डांट भी सकते थे, डरा भी सकते थे, धमका देते थे, गालियां देते थे, वो सुनते थे क्योंकि ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी थी नहीं, भाई मालिक ने एक जॉब दे रखी है इसके अलावा हम कहाँ जाएंगे, हमको काम भी नहीं आता, नॉलेज भी नहीं है, स्किल भी नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट फेज आया जिसको आप बोल सकते हो, पहला था आपका इंडस्ट्रियल फेज, सेकंड आया आपका आईटी फेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फेज, जो कि आपका लेट 1990s के अंदर और इनिशियल 2000 के अंदर, जहाँ पे आप डांटते नहीं हो, ठीक है. तो व्यक्ति सिर्फ देखता था अच्छा मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, मेरे पास थोड़ी बहुत स्किल भी है, अच्छा मुझे पैसा ठीक मिल रहा है तो मैं यहाँ पे काम कर लूंगा, मुझे यहाँ 10 मिल रहे थे यहाँ 12 रुपए मिल रहे हैं, मैं 12 वाली जगह पे काम कर लूंगा. आज के दिन है सोशल रेवोल्यूशन हो चुका है. सोशल मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 लाख दे रहे हो दूसरा 12 लाख दे रहा है, अगर 10 लाख वाला अच्छी वर्किंग कंडीशन दे रहा है यार आपको लीव्स मिल रही होंगी, ठीक है आपके यार वर्किंग कंडीशन अच्छा होगा, एक ग्रोइंग माइंडसेट है उस व्यक्ति को लिख सकता है कि यार यहाँ पे अगर मैं 2 साल काम करूंगा तो बहुत ज्यादा काम सीख जाऊंगा, तो हो सकता है वो 12 लाख वाला पैकेज भी छोड़ दे. एक वुमेन को अगर लगे कि यार यहाँ पे मेरे लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट है तो वो यहाँ रहेगी, तो इसको हम सोशल बोलते हैं. तो आप ये देखोगे एम्प्लॉयज की भी प्रायोरिटीज बदलती जा रही है, और पुराने टाइम में ज्यादा था ही नहीं यार पैसा. आप ऐसा नहीं कह सकते कि चलो डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाते हैं, चलो यार एज अ क्रिएटर बन जाए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें, चलो ग्रोथ हैकिंग हम निकालें, चलो देखते हैं स्टॉक से पैसा आप कैसे जनरेट कर सकते हो, वो सारे नहीं थे. और फिर होते हैं जो मैं बोलता हूँ बूस्टर, जो हर 10 साल में एक एक आते हैं. एक जमाना था आप कोल से पैसा कमा सकते थे, फिर एक जमाना था जो इंटरनेट का है. इंटरनेट में मतलब आपके इनिशियल प्लेयर्स आ गए कि भाई आपके अमेज़न आ गई, गूगल आ गई, इन्होंने अपने 1990s में अपने स्टार्टअप सबके स्टार्ट करे और आज के दिन वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन रखे हैं. फिर उसके बाद आपका इंडिया के अंदर हम देखें इनिशियल 2000s के अंदर रियल स्टेट का बूम आया था, आपकी प्रॉपर्टी बहुत सस्ती थी तो व्यक्ति खरीदे जा रहे हैं और देख रहे हैं एक एक साल के अंदर डबल प्राइस हो रहा है, ओ भाई साहब कैसे बढ़ रहा है कैसे बढ़ रहा है. फिर जैसे ही 2007-08 आया वो आ गया स्पाइक आ गया, अब वो रियल स्टेट उसी पर रह गई क्योंकि एक जगह था यार पैसा कब बढ़ेगा. मान लो मैं इस रूम का 10,000 रुपए किराया देता हूँ तो मेरी सैलरी अगर 10% बढ़ती है तो किराया भी 10% बढ़ना चाहिए, तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी 10% ही बढ़नी चाहिए लॉन्ग रन में अगर हम एवरेज देखें. पर आपने इसकी एकदम से इन्फ्लेट कर दी तो वो एक हाइक पे पहुंच गया, पर 2008 और 2010 के बाद देखें तो ज्यादा ग्रोथ नहीं है ऑन एन एवरेज मैं बोल रहा हूँ. रियल स्टेट आपकी लोकेशन पे बहुत डिपेंड करती है. अब इसके बाद अगर हम देखें तो अब सोशल मीडिया रेवोल्यूशन आया है और सोशल मीडिया में जो 2015-16 के अंदर इनिशियल मूवर्स थे उन्होंने सबसे ज्यादा एडवांटेज यहाँ पे लिया है. अब इसके बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज द न्यू बिग रेवोल्यूशन, इट मे नॉट बी, पता नहीं उसका देखा जाएगा. तो इस प्रकार से बीच में कुछ बूस्टर आते हैं. तो मैं तो जब भी अपने किसी स्टूडेंट से बात करता हूँ 12वीं तक तो लगा के दम लगा के पढ़ो, जैसे बढ़िया कॉलेज में चले जाओ, जो भी आपको मिला उसके अंदर घुसे, अब कॉलेज के 3 से 4 साल किसी एक चीज पे काम करो और उसको सोशल मीडिया से समहाउ अटैच करने की कोशिश करो. आज के दिन आपको आर्ट आता है, मैंने इतने आर्टिस्ट देखे जिनके मिलियंस में व्यूज एंड लाइक्स आते हैं, अपना आर्ट दिखाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, कितनी प्यारी चीज है वो. तो यही है, आप समझे समय किस प्रकार से बदल रहा है और करेज तो जी लेनी पड़ेगी. अगर आपको एक महबूबा पसंद है तो आप ये थोड़ी ना सोचोगे लोग क्या कहेंगे, आप तो भागोगे ना पीछे, मजनू तो लैला के पीछे भागेगा. सो लैला इज योर स्टार्टअप, 150 करोड़ की पॉपुलेशन इस देश के अंदर हो रखी है और बच्चे क्यों करने, अपने बिजनेस को अपना बच्चा बना लो. आप अपने वो वही है, आप देखते हो ना यार लंच डिनर क्या खाया नहीं, तो उसी प्रकार से आप अपना बिजनेस को देखते हो यार आज इसको पूरा प्रॉपर फीड मिला है. दैट्स
इट. आई स्टिल फील कि ये जो नई जनरेशन आ रही है जेन जी और आई थिंक फिर से अभी जेन एक्स इज द न्यू वन आफ्टर जेन जी. जेन जी अभी मतलब जो 2000 टू 2010 बॉर्न जनरेशन उसे जेन जी कहते हैं. आई थिंक 2010 से लेकर 20 तक की भी जनरेशन को नाम दिया गया. आई कांट रिमेंबर व्हाट. आई बिलीव इट्स जेन एक्स फिर से, बट आई डोंट नो. इन लोग की मेंटालिटी बहुत अलग है. तो हमारे मंकी में ही कोई कोई इन्फ्लुएंसर्स है, देव रयानी, तनीशो, अर्चित मेहर, सब लोग से मैंने बात किया जेन जी मेंटालिटी के बारे में. और उन्होंने तो कहा कि हर जेन जी के बच्चे का एक एजेंडा रहता है, दे स्टैंड फॉर समथिंग, कोई मोटिव रहता है विच इज लार्जर देन देमसेल्व्स. जब हम टीनेजर्स थे तो ऐसी मेंटालिटी नहीं थी.
हम खराब जनरेशन, वी आर द बैड जनरेशन. जो
हाँ, और लोग ये भी कहते हैं कि हमारी जनरेशन जो मिलेनियल्स है, हम लोग जेन जी के फैंस हैं. दैट्स वेरी ट्रू. लाइक वी एक्चुअली लव जेन जी. कि यार तुम लोग इवॉल्व जनरेशन हो.
अब मैं अपने छोटे 6 साल भाई से बात करता हूँ, मुझे लगता है ये अलग जनरेशन का, मैं अलग का हूँ और फर्क 6 साल का ही है. और
पर सोच विचार अलग कैसे होते हैं उनके अकॉर्डिंग?
मतलब हमारे टाइम में, हमारे बैच में सबका होता था यार एक पैकेज लग जाए, लाख दो लाख की जॉब लग जाए. अब जिन बच्चों से मैं मिलता हूँ, अरे जॉब लेके क्या करोगे, अरे हमारे को तो वो चीज करनी है. मतलब ऐसा थॉट प्रोसेस हमारा माइंड नहीं था हमारा. तो हाँ, ये जो न्यू जनरेशन आ रही है, मेरा मानना है कि सोशल मीडिया से अवेयरनेस इतनी हो गई कि अवेयरनेस से अब उन्हें बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं. अरे यार जैसे ये, जैसे कि मान लो उन्होंने रणवीर को देखा और रणवीर को देखा कि यार अच्छा, रणवीर अगर ये कर सकता है पॉडकास्ट के डोमेन में, तो क्यों ना मैं भी करूं. उन्होंने देखा अच्छा, अमन भैया ये कर रहे हैं, अमन भैया करते हैं तो मैं दूसरे सेक्टर के अंदर ये कर सकता हूं, या सेम में कुछ कर सकता हूं. इसी प्रकार से उन्होंने बाकियों को देखा. मान लो किसी की एक्टिंग अच्छी है, उसने आशीष चंचलानी को देखा कि यार ओके मैं ये कर सकता हूं. ठीक है, किसी ने देखा बीबी की वाइंस को देखा, कोई गेमिंग में अच्छा है या रोस्टिंग में अच्छा है, तो वो आपके अकॉर्डिंग भी बाकी व्यक्तियों को देखा. तो कह रहे यार ये तो बन रहे हैं. मान लो जैसे आपने जब 2015 हमने स्टार्ट किया, हमें नहीं पता था सोशल मीडिया कोई करियर हो सकता है. अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो डाल रहे थे क्योंकि हमें मजा. मेरे को तो पता ही नहीं चला था 2 साल की यार इससे कुछ निकाल सकते हैं. कॉलेज का फर्स्ट सेकंड ईयर निकल गया था, शुरुआत के 6-7 महीने मोनेटाइजेशन ही ऑन नहीं की थी. मम्मी को दिखाने के लिए फिर चलो भाई पैसे आ रहे हैं थोड़े बहुत, वो करा. मेरे को याद है शुरुआत में तो 10-15 रुपए पर डे आते थे मेरे एडसेंस के, बहुत ही कम व्यूअरशिप थी, वीडियो ज्यादा नहीं डाले थे. अब जो जनरेशन आ रही है वो कंटेंट डालने के लिए नहीं आ रही, वो तो करियर बनाने के लिए आ रही है कि इस पे लोग पैसा कमा रहे हैं, तो इसलिए मैं आ रहा हूँ. अब वो अपने आप में एक अच्छी चीज भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है. मतलब कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत आओ. मेरा मानना है कि पैसा है ना, कमाने के लिए आओगे तो एक पॉइंट के बाद थक जाओगे. शुरुआत में पता चला, शुरुआत के 2-3 साल आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए तो आपका मोटिवेशन डाउन कि यार पैसा तो आ नहीं रहा, या फिर 3 साल के बाद आपका यूं था कि यार मैं गाड़ी लूंगा, बोलूंगा आपने ले लिया, तब आपका मोटिवेशन डाउन. पर आपका जो पर्पज है वो आपको कि यार हाँ, मेरे को एजुकेशन के अंदर ए गेम लेके आना है. मेरा आज जो वीडियो डला है, अगला वीडियो उससे अच्छा हो और अच्छा हो, उस प्रोसेस से अगर आप प्यार करने लग गए तो आपका मॉनेटरी है उन सब चीजों को आप साइड प्रोडक्ट देख सकते हो.
अपने कंटेंट क्रिएशन की इतनी बात करी, आई नो कि आप एक एडुकेटर हो. वो जो पिछले पॉडकास्ट में बात करी हमने कि आपके अमन भाई के दिमाग में एक टार्जन द वंडर कार है, जहाँ आप खुद को एनालाइज कर रहे हो. जो भी इंसान खुद को एनालाइज ज़्यादा करता है वो दूसरे इंसानों को भी ज़्यादा एनालाइज करता है, अपनी खुद की इंडस्ट्री को एनालाइज करता है, अपनी सब इंडस्ट्री को एनालाइज करता है. जैसे कि आई फील कि योर इंडस्ट्री इज एडुकेशन, योर सब इंडस्ट्री इज कॉन्टेंट क्रिएशन. मेरी बात की जाए तो आई फील माई मेन इंडस्ट्रीज कॉन्टेंट क्रिएशन, माई सब इंडस्ट्रीज लिटिल टेक बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप्स. तो मैं सभी इंडस्ट्रीज को एनालाइज कर रहा हूँ. उसी नजरिए से मैं आपको यूट्यूब की दुनिया के बारे में पूछना चाहूंगा. 2 सिंपल क्वेश्चन है. पहले तो आप खुद कौन से यूट्यूब चैनल्स देखते हो और क्यों देखते हो? और दूसरी क्वेश्चन है कि जनरली आपको क्या लगता है कि मतलब जो एस्टैब्लिश Gen 1 क्रिएटर्स, आप भी वैसे Gen 1 क्रिएटर हो, 2015 में आपकी शुरुआत हुई थी, तो Gen 1 के क्रिएटर्स का फ्यूचर क्या है अकॉर्डिंग टू यू, जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग?
ठीक है, मैं तो बहुत सारे क्रिएटर्स को देखता हूँ. मतलब चाहे मैं इनफैक्ट एजुकेशन में सबसे कम देखता हूँ. मेरा मानना है कि एजुकेशन में तो अगर मैं देखूंगा तो या तो स्ट्रेस बढ़ेगा या मैं इजी हो जाऊंगा. यार लोगों के कुछ नहीं आ रहे, मुझे बच्चे पसंद करते हैं, मैं वो भी नहीं चाहता. मैं किसी और का देख के स्ट्रेस ले लूँ, वो भी मैं नहीं चाहता. इनफैक्ट मैं खुद अपनी इंडस्ट्री में ट्रेंड बनाने वाला व्यक्ति होना चाहता हूँ कि जो मैं करूँ वो लोग कॉपी करें तो अच्छा लगेगा. तो मैं यूजुअली बाकी डोमेन्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ कि ओके यार एंटरटेनमेंट में क्या चल रहा है, कॉमेडी में क्या चल रहा है, लोग क्या देख रहे हैं आजकल, अच्छा है सबका ये सब हो रहा है. इसके मेरे को लगता है कि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उनका बहुत महत्व होता है. और जब भी आप एक क्रिएटर को देखते हैं, स्पेशली एक जो Gen 1 या कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, उसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो चुकी होती है, मतलब शब्द भी हर एक वो बहुत ध्यान से बोल रहे होते हैं कि हर शब्द का क्या मतलब है, क्योंकि हर शब्द पे उन्होंने 400-500 कमेंट झेल रखे होते हैं। तो आप हर एक चीज को एक ऐसे वे में बोलते हो, मतलब एक होता है ब्रूटली ऑनेस्ट होना कि मान लो आप आए, आपने पूछा मैं मोटा लगा रहा, लग रहा मोटा दूसरी पहन, ये हो गया ब्रूटली ऑनेस्ट। एक आप बोल सकते हो यार वो जींस अच्छी लगेगी आपके ऊपर, इट इज द सेम थिंग, क्योंकि हर एक का सेंसिटिव, आप हो सकता है आपको आप एज अ दोस्त आप मान लें कुछ सेंसिटिव भी हो सकते हैं, हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग है, तो आप वो चीज गाइड करें। तो मैं तो अगर देखें जितने आपके जनरेशन वन क्रिएटर्स हैं सबको ही देखता हूँ, मतलब मैं नाम लूंगा तो कुछ बच जाए वो गलत होगा। आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो मैंने निखिल को देखा है, आशीष चंचलानी, कैरे मिनाटी, बीबी की वाइंस, आपके मैंने आपको बहुत देखा है यार 5 से 6 साल हो गए मुझे, और आप इतने भी क्रिएटर ले लो आपके, फ्लाइंग बीस्ट हो गए, और काफी क्रिएटर्स हैं जिनके मैं शायद नाम भी नहीं जाता पर उन्हें फॉलो अप बहुत करता हूँ ब्लॉगिंग के अंदर, ये 2-3 क्रिएटर्स और हैं। अगर मैं बाहर देखूं तो आपके इंग्लिश में पहले बचपन में लोगन पॉल वगैरह देखा करते थे, आज 2015-16 के अंदर, और काफी सारे ग्रोथ से रिलेटेड भी आपके काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स, उन सबको मैं देखता रहता हूँ। मुझे लगता है हर एक जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कॉन्टेंट किस प्रकार से इंप्रूव कर लिया जाए, लाइफ के बारे में जब मुझे ग्रो करने का देखना होता है तो मैं पॉडकास्ट, टिकटॉक्स, इन सबका सहायता ले रहा होता हूँ
नॉलेज के लिए, मतलब
हाँ नॉलेज के लिए। दो चीज होती है, एक तो अपना कंटेंट कैसे बेटर करें, एक है कि पर्सनल ग्रोथ कैसे करें, इन दो मेन रीजंस की वजह से मैं देखता होता हूँ। फिर थर्ड मैं इसलिए देखता हूँ कि कौन से जनरेशन वन आपके क्रिएटर्स हैं जो कि फेल हो रहे हैं,
आपको दिख रहे
हैं? हाँ मुझे दिख जाता है, मैं नाम छोड़ना लूंगा मैं अब नाम के लिए,
ये गॉसिप वाला पॉडकास्ट नहीं है, ये एनालिटिकल पॉडकास्ट है।
तो जनरेशन वन क्रिएटर्स हैं जो कि कुछ फेल भी हो रहे हैं, तो वो क्यों फेल हो रहे हैं? आप मिस्टेक से बहुत ज्यादा सीख जाओगे। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना कंटेंट का टाइप नहीं बदला, मतलब वो पता चला कि यार उस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, वो मोटा मोटी टॉपिक को अगर हम देखें तो 2-3 घंटे के अंदर आप एक वीडियो में भी समझा सकते हो, पर मान लो आप पिछले 4-5 साल से उसी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो वो एक टॉक्सिक चीज हो सकती है। अगर आपके फॉलोवर्स को ये नहीं दिख रहा कि यार हाँ ये व्यक्ति ग्रो कर रहा है तो वो एक टॉक्सिक चीज हो सकती है कि यार ये व्यक्ति तो, अगर ये नहीं दिख रहा कि आप अलग अलग डोमेन्स के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं तो वो एक टॉक्सिक चीज हो सकती है। अगर आपका वैल्यू एडिशन वाला जो पॉइंट है वो कम होता जा रहा है तो वो एक टॉक्सिक पॉइंट हो सकती है। अगर आपने ब्रांड्स के चक्कर में अपना जो ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी फैक्टर है वो कम कर दिया तो वो एक फैक्टर हो सकता है। अगर आप उस मोड में आगे कि ठीक है यार मैंने तो थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया अब मैं अपनी थोड़ी कंसिस्टेंसी कम कर सकता हूँ, वो व्यक्ति फेल हो रहा है। फिर यही कुछ 7-8 मेन रीजंस हैं। मेरा मानना है कि एक जनरेशन वन क्रिएटर को फेल होने के लिए मिनिमम 4-5 महीने के खराब कंटेंट डालना पड़ेगा जहां पे वो खुद की गलतियां नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उसे अगर 5-6 साल हो गए तो कोई ना कोई उसे हमेशा देख रहा होता है, और पर काफी बार हम वो चीज नहीं पकड़ पाते मल्टीपल रीजंस।
पता है भाई, मतलब आई फील कि आपकी कमेंट सेक्शन में लोग आपको कह देते हैं कि भाई आप ये गलत कर रहे हो या वो गलत कर रहे हो, तो आई ऑल्सो फील इट इज अ मैटर ऑफ ईगो कि नहीं मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मेरा कमेंट सेक्शन वाला नहीं जानता है, बट दैट्स नॉट ट्रू, वो आपकी ऑडियंस है, वो सब कुछ जानती है।
काफी बार हम उस नो में फैक्टर में आ जाते हैं, मान लो आपके घर वाले ही आपको कह रहे हैं कि बेटा आप ये कम चीज कर रहे हो, तो ये चीज मेरे साथ भी होती है, नहीं यार सही कर रहे हैं, पर आप मन में अंदर जानते हो नहीं बात सही कर रहे हैं, तो आप उस चीज पे अडेप्ट हो जाओगे तो इट्स गुड। और ये एक वो चीज है जिसमें हमेशा पापा भी कहते थे प्राइवेट सेक्टर में आपको काम रोज ही करना पड़ेगा, तो हम रोज कर रहे हैं, बस इसमें मजा आ रहा है तो वो फील नहीं हो रहा, ग्रो करने का मौका मिल पा रहा है।
हाँ यार, also I feel कि अगर आपको खुद का कंटेंट बोरिंग लग रहा है ना बनाने में तो फिर वो एक और रीजन वो फेलियर हो सकता है, आप खुद बोर्ड हो गए कंटेंट को लेकर। ये भी मैं देख रहा हूँ बहुत बहुत सारे लोग जेन वन के जिनको मैं ऑफलाइन जानता हूँ, दे आर बोर्ड ऑफ मेकिंग दैट सेम काइंड ऑफ कंटेंट, और उन्हें वो एफर्ट भी नहीं लेना रीइन्वेंशन का। और एक और साइड फैक्टर है, मतलब बोनस फैक्टर है कि लोग अपने रियल लाइफ में इम्प्रूव नहीं हो रहे, मतलब अगर आप रियल लाइफ में इम्प्रूव हो गए तो ही आपका कॉन्टेंट इम्प्रूव होगा,
मेरा
लोग वहीं अटके हुए हैं बेसिकली।
मेरे पापा एक चीज कहते हैं कि यार जो जिस व्यक्ति घर में स्ट्रांग है ना वो बाहर कॉन्कर कर लेगा, बाहर की दुनिया आपको नहीं हरा सकती, आप खुद ही हरा सकते हो या आपके घर वाले आपको हरा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब एक चीज है, दोबारा नो ऑफेंस किसी को, मैंने अभी रिसेंटली ही पढ़ा, मुझे नहीं पता ये चीज कितनी एक्यूरेट है, ये रावण जब मर रहे थे तो उन्होंने राम को कहा कि यार देखो मैं आपसे उम्र में भी बड़ा हूँ, मैं नॉलेज में भी बड़ा हूँ, मेरे पास सोने की लंका भी थी, मेरे पास सेना भी बहुत तगड़ी थी, उसके बावजूद भी मैं इसलिए हारा क्योंकि तुम्हारा जो भाई है, मतलब आपका, पर उन्होंने तो तुम्हारा, आपका जो भाई है वो आपके साथ खड़ा हुआ लक्ष्मण, और जो मेरा जो भाई है उसने मेरे अगेंस्ट हो गया। तो ये कुल्हाड़ी भी पेड़ तब काट पाती है जब उस लोहे का जो आपका कुल्हाड़ होता है उसके पीछे आप लकड़ी लगाते हो, यू नीड अ सपोर्ट। तो आपके फैमिली में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं छोटी मोटी चीजों के ऊपर, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चाहे आपका स्पाउस हो गया, आपका पार्टनर हो गया, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, तो जनाब फिर आप दुनिया पे कैसे कॉन्कर करोगे? आपके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और वहीं पे वो व्यक्ति आपके पीछे खड़े हो गए वॉल की तरह, तो आपके लोज भी आएंगे तो आपका पकड़ के रखेंगे, अरे अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हाइज भी आएंगे तो वो बोलेंगे अबे उड़ मत, कहाँ उड़ रहे, जा जा, वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। वो चीज मेरे को बहुत बेनिफिटरी लग रही होती है, और वहां पे पापा का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमेशा से। मैं मानता हूँ
शादी बच्चों के बारे में सोचते हो
मैम कि वो तो चीज आने वाली है, तो उसके बारे में क्यों ना सोचो, वो तो कि जब आएगी तब सोचेंगे उसके बारे में। तो बच्चों के लिए तो मैंने ये सोच रखा है, ये बिजनेस है, ये बच्चे हो जाएंगे, चार पांच कर लेंगे, वैसे ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रखी है, चार पांच स्टार्टअप कर लेंगे।
आपको कब चाहिए बच्चे, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज आइडियल एज?
कर तो रखा है, एक दो तो हो रखे हैं स्टार्टअप्स जो है इन्हीं को। मैंने उनके बारे में नहीं सोचा, मुझे यूं लगता है कि पता नहीं यार, मैं बहुत गलत हो सकता हूँ, बहुत नहीं। सही भी हो, क्योंकि मैं उम्र नहीं हुई मेरी अभी 30 क्रॉस की, मैं पूरा सोच रहा हूँ। पर मुझे लगता है कि जैसे कि आपको शायद लास्ट टाइम भी बताया, मैं एक बच्चा अडॉप्ट करने वाला था जब 22 की उम्र में था, और मम्मी ने सारे अस्त्र उठा लिए थे पहले, खुद तो यार उम्र भारी तुम्हारी प्रॉपर, मतलब बड़े हो जाओ यार थोड़े, 27-28 तो हो जाओ पहले। तो उस टाइम के लिए हटा दिया था, मुझे लगता था कि यार मेरा बच्चा होगा उस पर कितना प्रेशर होगा सोसाइटी का अच्छा परफॉर्म करने के लिए, मतलब मेरे को तो लगता है चाहे मैं कुछ भी करूँ यार, तू तो कुछ भी कर जिंदगी में, तू स्पोर्ट्स खेल, तो सब कुछ कर, तो कुछ भी कर, मैं कहा मेरी कितनी एनर्जी जाएगी उसके ऊपर, मैं उस एक बच्चे की जगह मैं 10 लाख बच्चे का ठीक कर दूंगा, ठीक है। मतलब कितने सारे आज आपके दिन आप चीफ मिनिस्टर्स को देख सकते हो, इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने भाई आज के दिन बच्चे नहीं है उनके, और वो टोटल अपना 100% अपना इसके ऊपर लगा रहे हैं, अपना जो उन्होंने अपने काम को ही अपना बच्चा मान लिया है। तब आपके यू नहीं है कि भाई बच्चे हमारे अच्छे कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप खुद अपने ऊपर 100% बच्चे लगाओगे सेल्फ के ऊपर। तो मैं तो मम्मी पापा को जब बोलता हूँ बोलते हैं हाँ बहुत बढ़िया, करने ही नहीं है बच्चे, बेटा मैं तो कहती हूँ शादी भी मत करो, ठीक है, करने ही नहीं है तुमको, हमारी इज्जत करोगे, हमारी तुम सेवा करते रहोगे, शादी नहीं करोगे। तो माई पेरेंट्स आर कूल अबाउट इट, एंड ये है कि लाइफ पार्टनर आप रखो तो वो आपके विजन में अगर आपको सपोर्ट कर पाए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।
मैं आपको एज अ 27 या 28 ईयर ओल्ड एक चीज़ बताऊंगा जो मैंने मेरे फेलो 27 और 28 ईयर ओल्ड से बात करके रखी है, और वो है कि एट दिस एज ना, जब आप जब 30 आपको पास में दिख रहा है कि हाँ 30 अभी होने वाला है, अभी 2 साल, तो आप बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं एक सडनली स्विच हो चुका है, शादी के बारे में सोच रहे, बच्चों के बारे में सोच रहे, और जो डेटिंग के कॉन्वर्सेशंस होती थी वर्सेज जो डेटिंग के कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं आजकल, एवरीबडी टॉक्स अबाउट ओके क्या आप मेरे लॉन्ग टर्म पार्टनर बनोगे, अगर यस तो देन आई विल ट्राई टू डेट यू। पहले क्या होता था कि चलो डेट करते देखते, बट कॉन्वर्जेशन पूरी बदल चुकी है, एंड बच्चों के बारे में भी बातें होती है कि वेन डू यू वॉन्ट किड्स। फिर अगर आप एक्चुअली वुमेन की बायोलॉजी स्टडी करोगे, बाय द टाइम दे एंड द मिड 30s उनको उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आई वोंट से प्रॉब्लम्स होने लगते, बट कंसेप्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा, इसलिए लोग एग्स फ्रीज करते हैं वगैरह वगैरह। तो हमारे एज के जो गर्ल्स हैं उनकी मेंटालिटी तो फुल तरीके से बदल गई है, लाइक इट्स अ वेरी इंटेंस स्विच, एक्टिवली शादी के बारे में सोच रहे हैं, एक्टिवली बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। लड़कों का थोड़ा सा कम है, बट लड़कों का भी हो रहा है, लाइक मैं मेरे बचपन के दोस्तों से मिला, स्कूल फ्रेंड से मिला, हम लोग सब शादी के बारे में बात कर रहे थे कि करनी है तेरे को, तेरे पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं, क्या हो रहा है। ऐसे हम पहले लॉकडाउन से पहले मिले थे और तब ऐसी बातें नहीं होती थी, मतलब एट एज 25 या एज 26, बट एट एज 28 अलग अलग वाइब है कॉन्वर्सेशंस में।
हाँ वही है, आप 27-28 में अगर आपको यार एक पार्टनर देखना, तो साल भर 6 महीने तो आपकी थॉट प्रोसेस क्या है वही समझने में लग जाएंगे। अब आप 27 की उम्र में भी वो चीज नहीं सोच रहे हो तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है ना कि आपने, तो इसलिए वो सीरियस हो जाते हैं। फिर बच्चों का मेरे को नहीं पता, सोसाइटी का फोमो है या खुद का कुछ बायोलॉजिकल चेंज आता है, या फिर दो में से एक पार्टनर चाहता हो दूसरा ना चाहता हो.
नहीं, खुद की बायोलॉजी का भी कुछ होता है, गर्ल्स का डेफिनेटली होता है, बट आई फील कि गाइज का भी होता है थोड़ा बहुत. आई हैव एक्सपीरियंसड, माई फ्रेंड्स हैव एक्सपीरियंस, सडनली वो क्रेविंग होती है कि मुझे कोई छोटे बच्चे का ख्याल रखना है. आई डोंट नो व्हाई, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ऐसी बायोलॉजिकल क्रेविंग हुई थी मेरे साथ एंड अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन ऑल्सो, बट आई डोंट नो.
चलो ठीक है, आएगा तब दे.
अमन भाई, वन बिफोर द ट्विटरवर्स सेक्शन, एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा आपसे. ओके, अगेन ये मैंने आपको शायद पहले भी पूछा था, बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज योर आइडियल ओल्ड एज? क्योंकि मोस्टली ना जो भी लोग अपने ट्वेंटीज में हसल कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी लोग या तो उन्होंने इस कोट को पढ़ा है या तो इस कोट के बारे में सोचते हैं, और वो कोट है कि इफ़ यू हसल वेरी हार्ड इन योर ट्वेंटीज यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. जितनी ज़्यादा मेहनत आप अपने ट्वेंटीज में करोगे उतना ज़्यादा आसान आपका थर्टीज हो जाएगा, फोर्टीज हो जाएगा. बट वॉट अबाउट सिक्सटीज एंड सेवेंटीज? मैं खुद के परस्पेक्टिव से बात करूंगा पहले और फिर आपसे पूछता हूँ. मुझे डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करना है, मंकहुड इन सम फॉर्म एम्ब्रेस करना है डेफिनेटली. मुझे ज्यादा मेडिटेट करना है, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट लव अराउंड मी, आई वॉन्ट फैमिली अराउंड मी. तो आपके लिए वो क्या है?
मेरा तो लॉन्ग टर्म विजन यही है कि एक जो आपका रिटायरमेंट एज है वो फाइनेंशियल रिटायरमेंट है. फाइनेंशियल रिटायरमेंट मतलब कि एक पॉइंट आएगा जिसके बाद बारे में आप घर से बाहर या कोई भी काम कर रहे होगे तो उससे पैसा आ रहा है नहीं आ रहा उससे फर्क नहीं पड़ता. मतलब पहले 10 रुपए कमाते थे, अब 100 रुपए कमाओ तो बेहतर है. पहले 10 कमाते थे, अब 10 हैं तो भी ठीक है. मतलब वो यूं नहीं होगा कि घर से बाहर जा रहा हूँ तो शाम को इतने पैसे होने चाहिए. वो होता है फाइनेंशियल रिटायरमेंट. उसके लिए हाँ, पर कब तक काम करोगे? जब तक हाथ पैर भगवान ने बढ़िया काम करा रखे हैं सब तक करते रहेंगे. इनफैक्ट मेरे एंड गोल ये हैं कि बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं आपके, कोटा रेवोल्यूशन मैं बोलूंगा, जो कि अपने आप में पूरा एक शहर बन गया. तो वो ऐसे नहीं होता कि आप अपने 20s में काम करके आपने कोटा बना लिया. उसके लिए तो थोड़ा करना है. आप ईशा फाउंडेशन को देखोगे, वो फाउंडेशन ऐसे ही नहीं बनी है. इस प्रकार से आपके टेम्पल्स के काफी सारे बन रहे हैं. तो मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा काम करना है, बहुत ज्यादा, और अर्ली 20s के अंदर तो काम करना सीख रहे हैं अभी. 30s के अंदर मतलब बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि गलतियां सारी कर चुके होंगे. 40s के अंदर उसे बहुत बढ़िया और एक्सपैंड कर देंगे. तो ऐसा कुछ नहीं सोचा कि कब शांत होंगे. हाँ, एक ऐसी एज आएगी कि भाई दिन 15 दिन ऑफ भी ले ली तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना घूम फिर के आप आ गए तब भी काम ऑटोमेट चल रहा है. पर नॉलेज के तो भूखे हैं, नॉलेज ड्राइव करती है. काम करना है, कोई ऐसी चीजें जो सोचते थे कभी पता नहीं कर भी पाएंगे या नहीं, वो आप कर लेते हो तो उसकी वाई भी अलग है, उसकी वाई भी दूसरी है. तो जो आपने खुद का अपना एक छोटा सा स्मॉल टाउन खोल लिया जिसमें आपके पास एक पर्टिकुलर एजेंडा को लेके वहां पे वो सर्विस आप कर रहे हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सोचता हूँ कि यार एक बूटस्ट्रैप मॉडल में कुछ बड़ा करना है, और उसके दौरान बहुत सारी चीजें सीखेंगे. बस बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने कर रखा है बूटस्ट्रैप में अच्छा, और अभी भी वो रुके नहीं. वो चाहे बिलियनेयर हो जाए वो तब भी काम करते रहते हैं क्योंकि काम करने में मजा आ रहा है. घर बैठ के क्या करोगे?
आई थिंक जो पहली क्वेश्चन मैंने पूछी मैं भूल गया, वो क्वेश्चन क्या था वो मैं भूल गया, बट मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा. आई थिंक कुणाल शाह क्रेड के फाउंडर ने ये बात करी थी कि पीपल थिंक दैट द जॉय ऑफ स्टार्टअप्स इज मनी, बट द रियल जॉय ऑफ स्टार्टअप्स इज सेल्फ डिस्कवरी. जितना जितनी ज्यादा स्टार्टअप्स आप खोलोगे उतनी ज्यादा आपकी खुद की सेल्फ डिस्कवरी होगी, और आप खुद को जानेंगे उस स्टेट ऑफ माइंड से आपको जॉय मिलेगा,
सेल्फ डिस्कवरी, आपको खुशी मिलेगी, दूसरों की भी डिस्कवरी होगी आपको बहुत ज्यादा. एंड आपको पता चलेगी कि यार आपकी जो हर एक की आपने जो एक चीज बोली थी लास्ट पॉडकास्ट में, डार्क साइड होती है, आप उसको देखेंगे. आपकी खुद की एक गट फीलिंग होती है जब आपको पता चल जाता है अगला व्यक्ति शायद कुछ ठीक नहीं है. वो गट फीलिंग को आप एम्ब्रेस करना सीख जाओगे, और बस कुछ किस्से और कहानी बनाने.
आपकी डार्क साइड क्या है? मैं भी खुद की डार्क साइड थोड़ी रिवील करूंगा. आपकी डार्क साइड क्या है?
मेरी डार्क साइड आप थोड़ा खुद का बताओ, मैं उस प्रकार से समझ जाऊंगा. डार्क साइड से मतलब मैं यूं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो मेरे साथ काम कर रहा है उसकी कुछ इनिशियल प्रायोरिटीज हैं. उसे अपना, जैसे एक एम्प्लॉय है उसको अपना सैलरी कमाना है, उसके फैमिली के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एक रिस्पेक्ट है, अगर उनमें से किसी भी चीजों में उसको ये लगा कि कमी हो रही है तो वो बाइट बैक कर सकता है। एक डॉग भी लॉयल होता है, पर उस डॉग को खाते वक्त अगर आपने छेड़ दिया तो काट देगा, सोते वक्त अगर छेड़ दिया तो हो सकता है कि रिस्पॉन्स में एकदम से काट दे, फिर चाहे वो पूंछ नीचे करके पैर पूंछ हिलाने लग जाए पर बाइट पड़ सकती है आपको। इसी प्रकार से डार्क साइड होती है, मतलब अगर आपके दिमाग में आप किसी को डार्क साइड, तो मतलब ये नहीं कि आपके अंदर एक विलन है, पर उस विलन और वो सभी ह्यूमंस के बीच में मेरे को कॉमन लगता है, वो ग्रीड हो सकता है। जैसे एक डार्क साइड है ग्रीड, पर उस ग्रीड को मेरे को लगता है, मैंने अपने केस में ऐसा नहीं है कि कोई एक स्मॉल ग्रीड मुझे देगा और उस लालच के केस में चलो जी ठीक है ये ब्रांड आई इसने इतना पैसा दिया हाँ मैं इसमें बिलीव नहीं करता फिर भी कर रहे हैं, या कोई दूसरी चीज हो गई कि किसी ने, जैसे हमने बताया था मेरे को तो एजुकेशन के अंदर आपके 100 करोड़ से ऊपर कहते हैं ठीक है आओ जी खरीद लेते हैं हम आपको या फिर हमारे साथ इक्विटी पे काम करो, मेरे को तो बहुत मिले मैंने तो उन सबको रिजेक्ट किया। तो ग्रीड सबके अंदर होता है पर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप अपना विजन जिस प्रकार से अपने नॉलेज बढ़ाएं। डार्क साइड का आप एग्जांपल मुझे दें जिससे कि मैं और बेटर समझ पाऊं आप कौन सा।
फर्स्टली आई अग्री एंड आई लव एवरीथिंग यू सेड, जो आपने वो कुत्ते का एग्जांपल दिया आई कंप्लीटली अग्री। एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा और वो है कि जब आप फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाते हो ना, इट्स मोर लाइकली दैट योर डार्क साइड विल कम आउट, स्पेशली इन प्रोफेशनल सिचुएशंस। और ये मैंने हर किसी के साथ देखा है, जितने भी मेरे टीममेट्स हैं, जब वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तब उनकी डार्क साइड ज़्यादा निकल कर आती है। इट्स लाइक द सेम थिंग, जब आप कम सोते हो तो आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, स्लीप डिप्राइव्ड होने से आप ज़्यादा इरिटेबल हो। इरिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इरिटेबिलिटी का मतलब यही है कि आप अपनी डार्क साइड रिवील कर दोगे, या तो वो लेजीनेस हो सकती है, या ग्रीड हो सकती है, या एंगर हो सकता है। तो आई फील कि मैं सोता अच्छे से हूँ मेरे मोस्ट टायर्ड फेजेस में भी, बट मान लो मैंने 6 महीने 8 महीने 9 महीने तक ब्रेक नहीं लिया तो फिर मेरी डार्क साइड निकल कर आती है और कभी कभी कंटेंट में भी निकल कर आती है। एंड ये मैं कॉन्शियसली ट्राई कर रहा हूँ कि कम करूँ। एंड आई फील पर्सनली मेरी डार्क साइड है आई एम प्रोन टू एरोगेंस। आई फील कि ये थोड़ी वो पंजाबी जेनेटिक्स की भी, लाइक पंजाबी जेनेटिक्स आर ग्रेट, आई लव पंजाबी जेनेटिक्स। आप पैशन के साथ लाइफ जीते हो, आप खुल के प्यार करते हो, यू आर अ गिवर, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, आप सर्विस में लगे रहते हो। बट वन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ पंजाबी जेनेटिक्स इज यू आर प्रोन टू एरोगेंस। आपको लगता है कि हाँ मैं ही अल्फा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो मैं वाला फैक्टर ज्यादा होता है। तो ये मेरी डार्क साइड है। और हमेशा जब मैं मान लो फिर मैं वेकेशन करने गया, मैं हिमालय चले गया, तो वहाँ माउंटेन्स को देखकर आप फिर से हम्बल हो जाते हो, आपको ह्यूमिलिटी फील होती है, आपको फील होती है कि यार मैं क्या ही हूँ, यू नो, और बहुत कुछ करना है। तो ये मेरी पर्सनल डार्क साइड है। एंड ओवर टाइम आई हैव बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ इट एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू किल इट ऑफ आल्सो।
अब अपने डार्क साइड की अगर बात करें तो मैं कुछ 3-4 चीजें बोल सकते हैं। पहला ये कि अगर कोई चीज मुझे ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के थ्रू बात करते वक्त अगर किसी को मुझे नुकसान है तो मुझे कोई बोल दे आप ये नहीं कर सकते, तो वहां पे कभी कभी मैं उसको दिल पे ले लेता हूँ कि यार क्यों नहीं कर सकते। उस चक्कर में काफी बार मैं मल्टीटास्किंग स्टार्ट कर देता हूँ, काफी बार मैं हेल्प नहीं लेता बाकी लोगों से, थोड़ा आइसोलेटेड, यार मैं ये काम अकेला बेहतर कर लूंगा, किसी को समझाऊंगा करवाऊंगा। डेलीगेशन अपनी टीम के साथ हो गया है पर बियॉन्ड माई टीम आउटसाइड वर्ल्ड किसी स्ट्रेंजर के साथ डेलीगेशन उतना मेरा स्ट्रांग नहीं हुआ है। एरोगेंस नहीं है, मतलब इनफैक्ट मेरा बिलो बोलेंगे ज्यादा ही है, एरोगेंस है ही नहीं। मतलब एरोगेंस मैक्स टू मैक्स में यूं दिल पे ये ले सकता हूँ कि यार इसने ऐसे कैसे कहा कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता, वो वाला एरोगेंस नहीं है कि ये मेरी को समझता क्यों नहीं कि मैं कितना बड़ा हूँ, वो वाला एरोगेंस नहीं है बिल्कुल। दूसरा ये है कि अगर फैमिली के अंदर हम देखें तो मैंने कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा लॉजिकल सेट कर लेता हूँ, इन द सेंस कि यार ठीक है छोटे मोटे जो चीजें हैं इनके ऊपर मैं ध्यान नहीं देने वाला। कभी कभी आप इतना काम करते हो कि कभी कभी पता चला मम्मी के लिए टाइम नहीं निकाल पाए, अब मम्मी तो उस चीज को फील कर जाएगी, मतलब मम्मी चाहती है आप लाइफ में अच्छा करो, पर आप सोचते रहे यार सेम घर में ही तो है, आप सेम घर में भी होके कभी कभी बात नहीं कर पाते, पता चला आप ऑफिस में बैठे हुए हो, फिर आप अपना रात को आप सो गए, फिर आप उठे मम्मी बस खाना ला रही है, कोई खाना खाया आपने रख दिया, बात नहीं हो पाई 15-20 मिनट आधा घंटा बैठ के करे, तो वो एक डार्क साइड है। कभी कभी मैं ये समझ नहीं पाता कि ये भी एक नीड होती है, मैं ये सोचता हूँ मम्मी की एक नीड है उनके बच्चे अच्छा करें तो हम करते रहे वही तो है मेन टास्क, तो वो एक मैं अपनी डार्क साइड मान सकता हूँ। फिर
है इतना भी डार्कनेस नहीं है अमन भाई, आप बहुत शुद्ध इंसान हो।
नहीं, बिल्कुल भी शुद्ध नहीं हूं। और मतलब बेसिक आपको वो तो रखना ही होगा कि यार आप इतने अवेयर हो कि कोई आपको बैकस्टैब ना कर दे, तो इसलिए आपको इतनी खुद की होनी चाहिए कि यार आप अवेयर हो उन सब चीजों की। और वहां पे मेरे पापा ने बहुत हेल्प किया क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है, थोड़ा उन्होंने क्राइम वगैरह सेक्टर में जॉब भी उनकी रही है, तो उन्होंने अच्छे से पास से चीजों को देखा है, ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग देखा है। तो पापा मुझे हमेशा बोलते हैं बेटा मन आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, अगला व्यक्ति भी ये सोच रहा है। तो मनी का एक ये है, पापा ने कहा, मैंने पापा ने भी कहा था और रिपोर्ट भी रखा है कि आप जो भी हो उसका आपको एक बेटर बड़ा वर्जन बना देगा। इफ यू आर हम्बल यू विल बी मोर हम्बल, इफ यू आर जनरस यू विल बी मोर जनरस, इफ यू आर जेलस यू विल बी अ बिगर जेलस पर्सन। आपके अंदर कोर प्रिंसिपल आपको ठीक रखना है, उसके ऊपर काम भी करना है। मेरा यूं है कभी कभी मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट कर देता हूँ कुछ चीजों में, और घर के मेंबर्स जैसे पता नहीं है या तो स्टूडेंट लाइफ से ही है, यानी कि जैसे बोलते थे ना ट्वेल्थ में आप पढ़ रहे हो और फिर कोई बोल देता है बेटा तुम पढ़ नहीं रहे, तो पढ़ने का मन नहीं करता। अरे यार पढ़ रहा था, मैं कर रहा था तो अपने मन से करना था मुझे। इसी प्रकार से मान लो मैं काम कर रहा हूँ और फिर आके कभी मम्मी मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया कि अरे बेटा आप और अच्छे से करो, ये क्या काम कर रहे हो, वैसे कुछ काम नहीं चलेगा। तो मम्मी के सिनेरियो में मैं हार्ट पे जाता हूँ, अरे नहीं यार, मतलब पापा का मैं मान लेता हूँ, मम्मी के केस में मम्मी आपको क्या पता किस प्रकार से काम हो रहा है, कितनी चीजें एक साथ मैनेज करनी पड़ रही है, इससे बेटर हो ही नहीं सकता। और मैं जब ये बोल रहा हूँ मुझे पता है इससे बेटर हो सकता है, यार इससे बेटर कर सकता हूँ, पर उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में कि नहीं यार ये आर्ग्यूमेंट जीतना है, वहां पे हम यूं बोल जाते हैं कि आर्ग्यूमेंट आपके फेवर के लिए हो रहा है, तो वो एक और डार्क साइड मैं बोल सकता हूँ है हमारे लिए। और एक और मैं ये बोल सकता हूँ कि क्योंकि हमने एज सच कुछ कोर्सेज सेल करने स्टार्ट नहीं किए, तो एक होती है आपके पास सुपर फाइनेंशियल पावर होती है। सुपर फाइनेंशियल पावर मतलब कि आपके चार टीचर आपको छोड़ के गए, तो आप अगले दिन ही अच्छा भाई इनके 10 रुपए थी, मैं 20 रुपए में दूसरी लेके आ जाऊंगा, वो आप तब कर सकते हो। मान लो आपने छोटे मोटे कोर्स बना रखे हैं, तो छोटे मोटे कोर्स से भी आप एक अच्छी कैपिटल अर्न कर लेते हो। तो वहां पे काफी बार मान लो मैंने एक बच्चे को बोल दिया कि ये चीज होनी है, वो चीज शेड्यूल पे नहीं हो पाती, तो वो मुझे मेरी पर्सनल ब्रांड पे काफी बार हिट होती है। काफी बार मैं बड़े एडटेक जायंट्स जो हैं इनके साथ मैंने कुछ थोड़े दिनों काम किया, तो वहां पे अपने अंदर ही कभी कभी कुछ ऐसी चीज हो गई कि कोर्स को मैं टाइम पे नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे पता है कि कोर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट अंदर अलग कुछ चल रहा है। वो मेरे को बहुत वो चीजें जो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता ना, और मुझे पता है कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इससे जो मैंने 5-6 साल में अपने ऊपर काम किया वो ब्रांड खराब, तब एक इरिटेशन आती है अंदर, और फिर कुछ नहीं कोई और अच्छा वीडियो देख लेते हैं, ये सोचते हैं कि कल बेटर कर लेंगे और बेटर कर लेंगे।
अब खुद पर
मेरे को एक यूं लगता है जैसे कि मेरी सबसे बड़ी डार्क साइड में बोलूंगा, मतलब कभी मैं खुद की फैमिली मेंबर्स को उतना काम नहीं कर पाया, इन द सेंस कि जैसे मैंने लाखों बच्चों को ठीक है पढ़ाया होगा, पर मैंने शायद खुद के भाई को नहीं पढ़ाया। तो मेरी मम्मी कहती है अमन तुमने सबको पढ़ा दिया, खुद के भाई को नहीं पढ़ा, तुम्हारा भाई अपने पास रहता है। तो ये तो मुझे बहुत ही अपनी डार्क साइड लगती है कि पता नहीं क्यों नहीं आता वो यूं, मतलब भाई को भी बोलते हैं सेम लेक्चर देख लो आप जो है, और साथ में होता है तो गाइड कर देते हैं उसे। तो ये एक सेक्टर है जिसपे और काम आई गेस मुझे करना पड़ेगा।
नहीं बट आई फील कि सम पीपल आर बॉर्न टू सर्व सोसाइटी एंड नॉट जस्ट फैमिली, मतलब पूरी सोसाइटी आपकी फैमिली।
मैं तो इस पे वही बोलूंगा कि हर व्यक्ति जो भी काम करता है, मैंने चाहे आज तक कोर्स नहीं बेचा होगा, पर मैं यूं बोलूंगा कि वो मेरे खुद के सेल्फिश रीजंस थे, मुझे अप्रिशिएशन मिलता था इसलिए मैं वो काम कर रहा था। मुझे यूं है कि यार मैं लाख क्यों, मैं मिलियन स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा एक साथ, तो वो भी एक अप्रिशिएशन है। मुझे अब लगता है कि यार हाँ जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए मैं वो चीज कर रहा हूँ। तो हाँ सोसाइटी भी उसमें सर्व हो रही है साथ साथ में, इस प्रकार से मैं उसे रखना चाहूंगा। और बस यही है दो चार डाक।
You're doing a great job, bro. आप खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हो, मैं भी खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता हूँ, तो आई कैन रिलेट टू इट, बट यू आर डूइंग ग्रेट। ये जो भी डार्क साइड्स के बारे में आपने कहा, इट्स नॉट एज डार्क एज योर थिंकिंग, बट आई अग्री, ये मतलब अकॉर्डिंग टू इट्स योर डार्क साइड, देन इट्स योर डार्क साइड। आई ऑल्सो फील कि जनरली इंडिया में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है, यूट्यूबर्स है, जो ज्ञान देते रहते हैं, बट दे हैव नॉट डन मच इन रियल लाइफ, उनके असली बिजनेसेस नहीं है। काफी सारे लोग कंसिस्टेंट भी नहीं रहते यूट्यूब पे, बट फिर भी लोग उनकी मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, उनका ज्ञान सुनते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट द पीपल आर डूइंग इन देयर ऑफलाइन लाइफ ऑल्सो. जो आप अपनी ऑफलाइन लाइफ में करोगे वो एक प्रूफ ऑफ मेथड होता है. वही ऑफलाइन चीजें करके आप सीखे हो. इट्स नॉट इनफ टू रीड बुक्स, इट्स नॉट इनफ टू नो अबाउट थिंग्स. कुछ करके दिखाओ नॉलेज के साथ, नहीं तो नॉलेज कोई भी हासिल कर सकता है.
आपने बुक्स का नाम लिया, आई नो कि बुक पब्लिश कैसे होती है, किस प्रकार से उसमें आप मार्जिन कर सकते हैं, क्या आपको किसी बड़ी जो पब्लिशर है उसके साथ आपको कोलैब करेंगे तो कितना आपका परसेंटेज रहेगा, खुद आप अपने किसी लोकल के पास चले गए तो आपको कितना मार्जिन्स मिल रहा होगा. जब आपने एकदम रूट लेवल की बात करी तो जो मुर्गी फार्म है उनके अंदर काम कर रखा है कि पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ का लेबर काम कर रहा है और उसके प्रॉफिट्स को हमने बायफर्केट कर लिया, तो इस लेवल का ग्राउंड वर्क जो है वो एक होते हैं क्रिएटर्स जो कि मान लो सोशल मीडिया से ही सारी अर्निंग आ रही है कि आपके एडसेंस से अर्निंग आ गई, आपके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आ गई, आपने कुछ कोर्सेज सेल कर दिए उससे आ गई और उससे आप अपना आगे बढ़ा के लेके जा रहे हो. एक है कि यार आपने काफ़ी और बिजनेसेस थे उनसे अपना पैसा कमाया, आज के दिन आपने दूसरे पैरेलल सोर्सेज ऑफ इनकम बना लिए हैं और अब जो आपका उसका एक्सपीरियंस है आप उससे शेयर कर सकते हैं. तो हाँ मतलब बढ़िया चीज़ है, बस करते रहो, मेहनत सीखते जाओ हर दिन. और जो भी बच्चा यहाँ देख रहा है, चाहे आप निक्कर में बैठे हो आज के दिन, अगले 3 से 4 साल में आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो. निक्कर पहनना गलत बात नहीं है, पर आप जो भी सोच रहे हो वो आप अचीव कर सकते हो. आपका आज बैंक बैलेंस जीरो हो सकता है, फाइनेंसिस में समझाऊंगा क्योंकि वो जल्दी समझ में आता है, पर पहले चाहिए होते थे 30 से 40 साल, आज के दिन आपको 3 से 4 साल चाहिए. डेडिकेटेडली अपने ऊपर काम करें. हाँ, ये जो मोबाइल है ये ब्रह्मास्त्र भी बन सकता है तो सिस्टम खराब भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका गोल क्या है. तो इसको दूर रखें, ये तो आप वो समझें आपका कॉम्पिटिटर है ना, उसको स्लो कर रहा है. इट इज़ अ डिवाइस जो कि आपके कॉम्पिटिटर को स्लो कर रहा है. अब इसको आपने भी ग्रहण कर लिया तो फिर तो आप भी स्लो हो गए, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा निकाल देगा चीज़ें, वो दूर रह रहा है. आपने इसको अवॉइड कर दिया, 50% विक्ट्री हो गई, और आपने इसको यूज़ कर लिया तब भी 50% विक्ट्री हो गई. तो
क्योंकि जो भी आप लाइफ में कर रहे हो गो हार्ड, यू नो, मतलब कुछ फोड़ के दिखाओ. लाइक डोंट जस्ट प्ले अ गेम. मतलब अगर आप गेम खेलो तो सचिन बनो, रोनाल्डो बनो, उस तरह की गेम खेलो. दैट्स द कोर एस्पेक्ट. इसलिए जब आप मतलब आप यूट्यूबर बन गए हो, ठीक है, इसके बाद क्या कर रहे हो? सोशल मीडिया स्टार बन गए, उसके बाद क्या कर रहे हो? इसके अलावा क्या कर रहे हो? क्योंकि उस चीज करने से, उस चीज में सक्सेसफुल होने से आपको इस चीज में भी फायदा होगा.
मतलब उससे एक और लेवल आप ऊपर जाना है. अच्छा ठीक है, एक प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर दो, उससे और ऊपर जाना है, क्रिएट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो तो खैर आप पहले भी कर सकते हो, उस चीज़ को स्केल कर लो, हैव मल्टीपल चैनल्स. आपको काम करते रहना पड़ेगा. अगर आपने किसी से 6 साल पहले शुरू करा है तो वो दिखना चाहिए कि 6 साल पहले शुरू किया है. आप खड़े मत रहो,
करेक्ट,
बिकॉज दिस इज सोशल मीडिया. कोई भी व्यक्ति आएगा 3 साल में आपको जंप करके चला जाएगा, चाहे आपने पीछे से कितना ही कर रखा है. तो मेरा मानना यह है कोई भी मार्केट के अंदर पुराना प्लेयर को हटाना बहुत मुश्किल होता है. वो तब हटता है जब वो पुराना प्लेयर खुद चाहे हटना. जैसे यूजुअली क्या होता है ऑफलाइन मार्केट में लोगों की, चलो भाई 50-60 साल उम्र होगी, वो रिटायर हो गए, उनका बच्चा है, वो संभाल नहीं पाया, तो भाई किसी ने आकर रिप्लेस कर दिया. सोशल मीडिया के केस में ऑल आर यंग पीपल एंड दे आर नॉट रेडी टू रिटायर. सो इधर द पर्सन है, उसकी हैबिट्स खराब हो जाए, वो हट जाए, तब आप उसको रिप्लेस कर सकते हो. और यू आर प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट जो कि मार्केट में किसी के पास है ही नहीं. आप ऐसी कोई बहुत तगड़ी आपकी स्पीकिंग स्किल्स हैं या फिर प्रोडक्ट या फिर कंसिस्टेंसी, कुछ आपके पास बहुत ही एक्सेप्शनल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. जैसे कि मेरे को लगता है कि टेक के अंदर बहुत सारे जायंट्स हैं, और जैसे जो प्रॉपर टेक सोशल मीडिया, जैसे कि टेक बर्नर हो गया, टेक्निकल गुरुजी हो गए. एंड टेक्निकल गुरुजी की स्ट्रेंथ ये है कि हाईली कंसिस्टेंट, मतलब वो कंसिस्टेंसी एक अलग है कि एक चैनल पर आप 2 वीडियो एज अ क्रिएटर निकाल रहे हो और उसको मैच करना के लिए मतलब 5-6 साल से है वो कंसिस्टेंसी, एक साल की बात नहीं हो रही. व्हेन वी टॉक अबाउट टेक बर्नर, बोलने का स्टाइल ही अलग है. तो चलो भाई आज हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में, और वो अपने आप में एक फनी स्टाइल लगता है, अगला व्यक्ति एंटरटेन होता है साथ में देखने को, तो वो एक यूनिक चीज़ हो गई है. साथ में उनके पास बेसिक और स्किल सेट होते हैं, जैसे टेक बर्नर की अपनी एक टीम है, टेक्निकल गुरुजी अपना एक इंडिविजुअल खुद ही चला रहे होते हैं. तो वही है, मेरे को शौक मिला टेक बर्नर को, 8 साल हो गए हैं सोशल मीडिया साल. तो मैंने कहा यार ये तो पता ही नहीं था. बोले यार मैं रिसेंटली 3-4 साल में अच्छा कराऊँ, शुरुआत के 4 ईयर्स में तो था नहीं. पर वहाँ पे आपको देखना होता है कि ये व्यक्ति रुका नहीं. सो हैव एन आइडिया, स्टार्ट, डोंट स्टॉप, एंड किसी एक चीज़ में एक यूनिक चीज़ होनी चाहिए आपके बारे में. दैट्स इट.
अमन भाई ट्विटर वर्स का टाइम आ गया है.
हाँ.
तो अभी ट्विटर वर्स सेक्शन, बट ये रैपिड फायर रहेगा, ये बहुत क्विक आंसर्स.
ठीक है ठीक है, डन.
तो स्टार्ट करते हैं. ओके अमन भाई, आप ट्विटर यूज करते हो वैसे?
हाँ करते हैं, करते हैं, यूं नहीं करते पर बहुत कम करते हैं.
डू यू एंजॉय ट्विटर?
ट्विटर से ज़्यादा मैं बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं उस पर तभी जाता हूँ जब स्टूडेंट्स के लिए कोई ट्वीट वगैरह करने होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन तभी.
मेरे लिए एक सेल्फ हेल्प टूल बन गया, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, स्पेशली अबाउट बिजनेस, अबाउट वो जो मैंने कहा ना मेरा चैलेंज अब EQ बना है कि अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग पीपल. ट्विटर से बहुत कुछ सीखता हूँ. तो ये हमारा ट्विटर वर्स राउंड है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट राउंड है. ये आप रैपिड फायर स्टाइल में आंसर कर सकते हो, बिकॉज आई थिंक मोस्टली हमने कवर किए सारी चीज़ों को.
ठीक.
ओके, शगुन राय पूछते हैं, वॉट इज द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 10 years? विल देयर बी मोर कॉम्पिटिशन और लेस कॉम्पिटिशन?
मोर
मोर
मोर.
ये लॉजिक क्या है इसका?
लॉजिक यही है, अगर आप यूँ देखो पिछले 5 साल में क्या फ़र्क पड़ा है, तो जैसे मेरे सभी 11 भाई जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हैं, तो मुझे पता चला किस प्रकार से कंपटीशन. पहले क्या है, सबके पास डेटा नहीं होता था. आज के दिन वो व्यक्ति जो कि गांवों के अंदर रेलवे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है उसके पास भी रिसोर्सेज हैं, या तो यूट्यूब पर पढ़ सकता है, नहीं तो जो कोर्सेज हैं वो 1000-2000 में हो गए. तब जरूरी नहीं है कि आप मुख्यमंत्री में जाकर 50-60 हज़ार का कोर्स खरीदो, आप घर में बैठे बैठे कर सकते हो ना, आपको किराया देना पड़ेगा वहाँ पर जो मंथली 10,000 रुपये होते हैं, बाकी सारी चीज़ बच जाती है. तो इस प्रकार से आप अपना कॉम्पिटिशन बढ़ेगा आने वाले समय में.
क्रेजी. ज्योति राठी पूछती है, वेरियस वेज ऑफ पैसिव इनकम, लेट्स कीप इट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स या मतलब अर्ली 20s में, पैसिव इनकम के सोर्सेज क्या हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू?
मल्टीपल हो सकते हैं. पहला तो यार आप एज अ फ्रीलांसर अलग अलग स्किल पे काम कर सकते हैं, मतलब अगर आपको कंटेंट साइड में करना है आप वीडियो एडिटर बन सकते हो, आप एनिमेटर बन सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, आप स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो. ठीक है, फिर आप अगर आपको और है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में SEO वगैरह कर सकते हो. बाकी आपको टेक में जाना है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, आपको कोई स्किल सीखनी पड़ेगी. कोई आपको 10,000 रुपये तभी देगा जब आपको कोई काम आता होगा. फिर इसी में आप खुद एज अ क्रिएटर भी काम कर सकते हो. और बात करें, मैंने प्रॉपर इस पर डिटेल वीडियो बनाया है, पर ये पैसिव इनकम की बात यही है, आपको कुछ काम करना पड़ेगा. एज एन इंटर्न आप पैसा कमा सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके, और जो आप पैसा कमाओ, देखो पहले आप सीधा एकदम से रियल स्टेट में नहीं कूद सकते, पहले आपको पैसा कमाना पड़ेगा. आपके पास कुछ होंगे पैसे कि ओके 10, 15, 20, 35, 40, 50 लाख, और इसमें भी मोर देन 30 इज इम्पॉर्टेंट, और 30 में भी आप पता चला किसी के साथ पार्टनर करके पहले प्लॉट ले रहे हो, देन यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट 30 सो डैट आप कुछ कंस्ट्रक्ट करके आए उसके ऊपर. तो पहले एक फनल को आप स्ट्रॉन्ग कर लें, और ठीक है अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो तो एक स्किल सीख लो वीडियो एडिटिंग. आपको क्या पता कि उस वीडियो एडिटिंग के माध्यम से कल को आप एक क्रिएटर बन जाओ, क्रिएटर करके आपकी एक नई जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो जाए. आपको क्या पता आज आप एक एनिमेटर हो, कल को आप सोचो मैं एक एनिमेटर क्यों, मैं मल्टीपल 5-6 बंदे अपने साथ जोड़ता हूँ, एक एजेंसी बना के लोगों के लिए आप एज अ फ्रीलांसर पेज आप जाओ, एक एजेंसी की तरह काम करना स्टार्ट कर दो. वेब में भी सेम हो सकता है, ऐप में भी सेम हो सकता है. तो दीज आर सम सोर्सेज जहाँ से आप अपनी पैसिव इनकम कर सकते हैं.
आई थिंक सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ पैसिव इनकम इज ऑलवेज बिजनेस, पर उस बिजनेस को सेटअप करने में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, मेंटल एनर्जी लगती है.
ईच एंड एवरी
और अगर
मतलब एज अ एडिटर आप कितना कमाओगे, आप अपना ठीक है 20-30,000 डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना एक्सपीरियंस है, पर उसी चीज़ को आपने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया तो वो अपने आप में एक नई चीज़ है. तो हर एक जो चीज़ है, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, आप इसको एक बिजनेस में क्रिएट कर सकते हैं. सोशल मीडिया है तो यू कैन फाइंड द राइट ऑडियंस, गिव देम द राइट प्रोडक्ट एंड दे आर रेडी टू पे.
Also, I'd like to highlight कि I feel कि जितने भी Gen Z के बच्चे हैं या जितने भी early 20s के लोग हैं, अगर क्रिप्टो नहीं करना है मत करो, बट एटलीस्ट क्रिप्टो और स्टॉक्स के बारे में सीखो. जस्ट सीखो कि कैसे वर्क होता है. हमने दो की पॉडकास्ट किए, ये कॉल बैक है. एक है सुमित गुप्ता के साथ, कॉइन DCX के फाउंडर है, उनके साथ बढ़िया क्रिप्टो का पॉडकास्ट किया. फिर मैटिक के फाउंडर संदीप के साथ भी एक बढ़िया पॉडकास्ट किया है. आई थिंक बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट रिलीजेस वो पॉडकास्ट रिलीज हो चुका होगा. बहुत ही तोड़ पॉडकास्ट है टू अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो का लॉजिक क्या होता है, अंडरलाइंग लॉजिक, ब्लॉक चेन का एग्जैक्ट लॉजिक क्या होता है, मैटिक की जो वैल्यूएशन हुई है अभी इट्स $1 billion वर्थ वैल्यूएशन क्यों हुई है, तो वो सब समझाया. एंड आई बात स्टॉक्स की तो मलकांस व्यू एक यूट्यूब चैनल है, उनके साथ एक वीडियो किया था, ABCs ऑफ स्टॉक समझाए हैं उसमें स्टॉक मार्केट. तो एटलीस्ट सीखो, नहीं करना तो मत करो बट सीखो इन चीज़ों के बारे में. दैट्स वन थिंग आई'd लाइक टू हाईलाइट.
सीखना ऑल्सो इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि सीखते वक्त आपको अपने कान नाक सब खुले रखने हैं, इन द सेंस कि जब आप सीख रहे हो तो रिसोर्स एकदम परफेक्ट होना चाहिए, आप कुछ चीज़ें समझ पाएँ कि कितनी चीज़ें हैं जो मेरे को इसमें से पिक करनी है, कौन कौन सी मेरे को पिक नहीं करनी है. आप लर्निंग मल्टीपल सोर्सेज से रख सकते हैं, आधी नॉलेज कभी भी नहीं रखनी. अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है तो उसको खोद दो, लेजिट जो आपका है, चाहे उसमें अब आपको 2 रुपए लगाने पड़े तो 2 रुपए लगाओ, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट.
आर्यन सराफ बहुत सिंपल सवाल पूछते हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हिज मोटिवेशन, आपकी मोटिवेशन का सोर्स क्या है?
मेरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन यही है, जब आज के दिन आप काम कर रहे होते हो तो मैंने आपको पहले ही बताया 100 CR से ऊपर के ऑफर थे, अब रिजेक्ट किया तो भागना तो है ना, ऐसे तो मैं रिजेक्ट किया कुछ काम तो करना ही है. साथ में एम्प्लॉयज हैं उनके भी यार आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है कि यार इनको एक बढ़िया आप करियर दे पाएँ, तो वहाँ पर आप ग्रो करते हैं. आपके जो बच्चे हैं वो आपसे और डिमांड करते हैं कि यार और बेहतर करो, तो वहाँ से, तो मतलब एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन ही. और अगर आप इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं कौन आपको मोटिवेट करते हैं, तो वहाँ पे भी एक व्यक्ति नहीं है. मैं कभी रणवीर से मोटिवेट हो रहा हूँ तो कभी मैं किसी और क्रिएटर से, कभी मैं किसी बुक ऑथर से मोटिवेट हो रहा हूँ तो कभी मैं कभी टेड टॉक के जो स्पीकर हैं उनसे, तो अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें सीख रहे होते हैं और वही सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपके अंदर है. यार मेरे को चीज़ उखाड़नी है तो आप देख लोगे इसके लिए मेरे को क्या क्या टूल्स चाहिए. अच्छा यार दिमाग में ये चीज़ ठीक है, इसको ठीक करने के लिए कुछ देखता हूँ क्या है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है. अच्छा किसी को हायर कैसे करें, किसी को फायर कैसे करें, आप देख लोगे बेस्ट रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है. तो उसी प्रकार से
ब्यूटिफुल. ओके ससांक पूछते हैं, वॉट आर अमन्स थॉट्स ऑन क्रिप्टो एंड डिजिटल फाइनेंस इन जनरल. चलो क्रिप्टो क्रिप्टो आंसर करते हैं आप, व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिप्टो करेंसी?
नॉट अ बिग फैन, पर वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है. पर मैं यूँ बोल सकता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास 100 रुपये पड़े हैं तो मैं 1-2 रुपये उसके अंदर लगा दूंगा अपने पोर्टफोलियो का. आप में से काफ़ी हो सकते हैं जो 50% तक लगा दूँ, पर मेरा उसके ऊपर अलग है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट हो रही हैं. और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इससे पहले कि बिटकॉइन लवर्स मेरे को उड़ा दें, पर मेरा इंडिविजुअली ये मानना है कि अलग अलग सेक्टर्स पे एक 25-30 मिनट की वो अपने आप में एक पॉडकास्ट हो जाएगी कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ. और इनफैक्ट एक वीडियो आ भी रहा होगा बिटकॉइन पे, मैंने निकाल भी दिया था बट आई अपलोडेड इट ऑन द रॉन्ग चैनल. 6 चैनल पे ये नुकसान होता है कभी कभी, गलत चैनल पे लॉग इन पे अपलोड हो गया. तो आ रहा होगा अगले 6-7 दिन के अंदर कि व्हाट आर माय थॉट्स अबाउट बिटकॉइन. इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, आप चाहें तो कर सकते हैं, बट इट बट आपको नॉलेज होनी चाहिए पहले. इट माइट बी फॉर यू, इट माइट नॉट बी फॉर यू. किस प्रकार से वर्क करती है? मैं किसी से पूछूं अगर एक सवाल में बिटकॉइन के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मेजॉरिटी लोगों का
क्योंकि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर देता हूँ, या फिर इसका वैल्यू बढ़ रहा है, आज से 10 साल पहले ये इतना था अब ये इतना हो गया, तो देख लो बल रहा है. और सिर्फ आपके है ना 21 मिलियन कॉइन्स हैं, तो अभी सिर्फ 100 मिलियन यूजर्स हैं, आने वाले टाइम में बहुत सारे हो जाएंगे, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब इस पर कुछ 5-6 क्वेश्चन हैं जो कि काउंटर क्वेश्चन होने अपने आप से, वो अपनी जगह सही है, मैंने मिमिक नहीं किया आपको, मैं बस एक तरह से हंसी मजाक से आपको बताया. तो हम उस वो अप क्यों जा रहा है और वो डाउन क्यों जा रहा है, क्या हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, क्या उसकी अपने आप में एक इंट्रेंसिक वैल्यू है, क्या वो एक फिएट करेंसी है, क्या किसी सरकार ने उसे बैक कर रखा है, व्हाट इफ़ अगर कल को 2 दिन बाद वो बैन हो जाए, व्हाट इफ़ की सरकारें कहने लग जाएं कि हम अपनी खुद की करेंसी लाना चाहते हैं. मैं बिल्कुल नहीं कह रहा क्रिप्टो में मत डालो, मैं तो खुद डाल रखा है, पर मैं राइट अवेयरनेस भी साथ में रखना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं उसके गुड भी बताऊँगा, उसके इफ़ एंड बट सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ. बहुत सारे फैन भी हैं, इनफैक्ट मुझे काफ़ी बार लगता है एक व्यक्ति जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देता है, आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर दो, आप उसके एम्बेसडर बन जाते हो, क्योंकि यू आर होपिंग कि मैंने इसका एक्स पे किया तो कल को कोई इसका 2x पे करेगा तभी मुझे बेनिफिट मिल रहा होगा. एंड दिस इज़ अ डोमेन विच इज़ हाईली इन्फ्लुएंशियल, मतलब आप इसका ट्रेंड कंट्रोल कर सकते हो, आप कि ये नाम मार्केट में कितना चल रहा है इसका फोमो आप क्रिएट कर सकते हो मार्केट के अंदर. देर आर प्रॉपर चैनल्स की सडनली एकदम से सभी लोग दे आर टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग. देर इज सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, पर आपको कितना उठाना है वो हमेशा आपको कान खुले रखने होंगे अपने.
किसी भी चीज में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, स्टॉक्स भी हो सकते हैं, एफडी भी हो सकता है, एडुकेट योरसेल्फ फर्स्ट, उससे सीखो समझो फिर इन्वेस्ट करो. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू हाईलाइट. ओके ध्रुमन त्रिवेदी पूछते हैं, व्हेन वी कैन गेट रिड ऑफ द ट्यूशन कल्चर इन इंडिया. क्या आपको लगता है ट्यूशन कल्चर अभी स्लोली फेड अवे हो जाएगा?
ट्यूशन कल्चर किस प्रकार से? अब ट्यूशन है क्या, ऑनलाइन पढ़ने को हम ट्यूशन नहीं मानते या पर्सनल ट्यूशन की वो बात कर रहे हैं?
वही
तो पढ़ाने के लिए तो यार टीचर चाहिए, खुद तो कहाँ से सीख जाएंगे. हाँ माध्यम बदल सकते हैं कि ऑफलाइन के साथ साथ लोग ऑनलाइन की भी सहायता लें. ऑफलाइन महंगा पड़ता है, ऑनलाइन सस्ता पड़ता है. कुछ हैं आज के दिन जो दोनों को एक साथ परचेज करते हैं कि यार एक टीचर अगर फिजिक्स का मान लो अच्छा नहीं है तो उसका ऑनलाइन हमने कोर्स ले लिया, या फिर कोई मान लो 11th 12th में ऑफलाइन करके बैठा है तो उसने देख लिया ऑफलाइन में भी कोई यार ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चले गए तो सिलेक्शन है, तो वो सोचता है मैं घर बैठ के पढ़ाई करूँ, तो वो ऑनलाइन ले लेता है अगर वो ड्रॉपर स्टूडेंट है तो. तो इस प्रकार से हो रहे हैं, कोई भी एक दूसरे को 100% पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा. ऑनलाइन आएगा गेम के अंदर, बट वो एक परसेंटेज ही ले रहा होगा, वो कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर पा रहा होगा.
हिमांशु हनुमानते पूछते व्हाट इज अमन्स ओपिनियन फॉर प्राइवेट जॉब्स एस्पेशली फ्रॉम 2025 टू 2040. मैं रिफ्रेज करता हूँ, व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ प्राइवेट जॉब्स? मतलब जो लोग कह रहे हैं ना कि एमबीए भी इररिलेवेंट हो जाएगा, स्किल्स बेस्ड चीज़ें होंगी, तो आई थिंक उस चीज़ पर आप एक्सपैंड कर सकते हो.
ये बहुत ज़्यादा ही जेनरिक सा क्वेश्चन पूछ लिया. प्राइवेट जॉब अलग अलग प्रकार की होती हैं. एक प्राइवेट जॉब होती है जो कि आपको, आप मान लो आप एक अपने आप में आपने एक लीगल एजेंसी खोल रखी है और आप एक हेयरिंग का 1.5 से 2 लाख प्रति घंटा चार्ज कर रहे हो, प्राइवेट जॉब अच्छी है, आपके सारे बिल्स पे हो रहे हैं. एक है कि यार आप प्राइवेट जॉब में हो, आपके वर्किंग आवर्स भी पता चला 12-12 घंटे कर रखे हैं, आपकी नाइट शिफ्ट हो रही है, आपकी सैलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो डैट माइट बी अ टॉक्सिक. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सेक्टर कमज़ोर है. वही उसी प्रकार का सवाल हो गया कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ या मेडिकल में जाऊँ या लॉ करूँ, ऑल करियर्स आर गुड. ये डिपेंड करता है कि आप उस डोमेन के ऊपर के 20% में हो गए, और मेरा मानना है ऊपर के 20 में मतलब ऊपर के 1% में रहो. इफ़ यू आर इन द टॉप 1% ऑफ एनी गेम, वो झाड़ू लगाना ही होता है, तो आप अर्बन कंपनी बन जाओगे, ठीक है? तो आपको टॉप 1% में जाना है उस गेम के. और प्राइवेट जॉब मेन जॉब को नुकसान की तरह से मत देखो. अगर वो आपके बिल्स पे कर रहे हैं, यू आर डेस्परेट, वी नीड इट, आप ये कर सकते हो मैक्स टू मैक्स उससे सीख के अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, या उसके दौरान अपनी एक साइड हसल 4-4 घंटे लगा के, 7-8 घंटे लगा के उसमें से आउट हो सकते हैं, अपनी कंपनी बदल सकते हैं. तो ऐसा देखें कि प्राइवेट जॉब वो तो बढ़ेंगे आपके अंदर अगर राइट स्किल है. राइट, मेरे को हायर करना होता है, मैं तो भूखा होता हूँ कोई अच्छा एम्प्लॉय मिल जाए. पर दिक्कत क्या है, मेजॉरिटी जब भी ग्रेजुएट्स होते हैं उन सबके पास राइट स्किल सेट नहीं होता, क्योंकि हर एक को एक्सपीरियंस व्यक्ति चाहिए. एक्सपीरियंस नहीं तो एटलीस्ट इंटर्नशिप कहीं पर कर रखी हो. और एज अ स्टार्टअप जब आप खुद उठ रहे होते हैं तो यू नीड इंडिविजुअल्स हु आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस, नॉट जिनको आप भी सिखा रहे हो. तो कोशिश करें कहीं पे भी आप इंटर्नशिप करें, चाहे वो पेड हो अनपेड हो, काम सीखने को आपको मिल रहा हो. और अगर आप अपने काम में बेहतरीन हैं तो आपकी वैल्यू हमेशा की जाएगी. और चीज़ें कुछ कुछ डोमेन्स में बदल रही हैं. तो जैसे अगर आप टेक में हो तो टेक में न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो उनको आपको खुद सीखते रहना पड़ेगा टाइम के साथ. पता चला साल के बाद अब ये यूज़ नहीं हो रहा, पहले हम PHP में काम करते थे, अब दूसरा फ्रेमवर्क आ गया, तो वो आपने सीख ली. इतना मुश्किल नहीं होगा जितना आपको सुनने में लग रहा है, पर समय के साथ आप वही ब्रूसली वाली चीज, बी द वाटर, आप जार में रखते हो जार की शेप लेता है, ग्लास में रखते हो ग्लास की शेप ले लेता है. बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप में दम होना चाहिए.
स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस, जैसे लेब्रॉन जेम्स कहते हैं, मतलब वही 1% लॉजिक, बी द 1%. पूजा गोरे एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछते हैं, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ट्विटर वर्स. व्हाट लाइफ स्किल्स हेल्प्ड अमन बिल्ड हिज ओन करियर? लाइफ स्किल्स
की बात करें, सबसे पहले माई कनेक्शन विद माई फादर, वो बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं मुझे कि क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से करनी चाहिए. सेकंड ये कि थोड़ी आदत है मेरे को खुद ही नॉलेज खोदने की, चाहे वो कहीं से ही मिले उसको ग्रैब करने की, चाहे वो अब जानवर से आप सीख रहे हो तो हर जानवर से आप कुछ कुछ सीख सकते हो. जैसे डॉग होता है उसकी नींद कभी भी उठा लो एकदम से, बहुत लॉयल्टी उसमें बहुत अच्छी एक चीज़ है. आप कौवे को देखोगे तो उसको बोला जाता है आप पत्थर फेंकने की सोचोगे उससे पहले वो उड़ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा अवेयर है. बगुले को देखोगे तो एक टांग पे खड़ा रहता है, फोकस बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रांग है. तो इसी प्रकार से इंडिविजुअल से भी आप सीख सकते हो, चाहे उसने बहुत ही अच्छा फाइनेंशियली करा हो या चाहे नहीं भी कर रखा हो, तो वो सीखते रहो, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते रहो और साथ साथ में लोगों को सिखाते रहो, ग्रो करते रहो. दिस इज़ अ लाइफ स्किल. और अगर बात करें तो सीखने को इतनी चीज़ें हैं कि कुछ पॉइंट आउट करना मुश्किल होगा. आप हर दिन अपने आप को एक बेटर की, कल मैं 100 था, अपने आप को 101, अच्छा आज मैंने शेड्यूलिंग के बारे में एक और चीज़ सीखी है, अच्छा आज मैंने ये सीखा कि कोई भी डिसीजन जब मैं लूँगा तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, 5 मिनट के अंदर मेरे को वो डिसीजन लेना है. जैसे मेरे पास इनिशियली एक इशू था, मैं बाहर से ऑर्डर करता था तो मैं बहुत टाइम लगा देता था, यार ये भी खा सकते हैं ये, मतलब मैं फूड लवर हूँ तो शाही पनीर खाएँ या दाल मखनी खाएँ समझ नहीं आ रहा क्या खाएँ. अब मैंने कर लिया यार कोई भी हो खाना ऑर्डर करना है 2-3 मिनट के अंदर, भाई खाना ही है, ठक 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 ऑर्डर खत्म. तो वहाँ से मतलब ये भी एक चीज़ टाइप की सीखा है, इसको मैं कौन सी लाइफ स्किल के अंदर लूँ. डिसीजन मेकिंग के अंदर आप ले सकते हो, बी मोर हम्बल, ट्राई टू बी फ्रेंड्स. फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर ही फ्रेंड्स हो जाएँ, जैसे जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जैसे मतलब काफ़ी चीज़ आप हेट एंड ट्रायल से समझते हैं. जैसे कि पहले मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड हो गया, जब आप फ्रेंड हो जाते हो तो फिर आपको एक टास्क दो, उसको उतने सीरियसनेस के साथ नहीं देखा। आप अपने दोस्त को बोलोगे ये काम कर, वो नहीं करेगा। तो आपको उनका दोस्त भी बनना है, पर आपको ये भी रखना है कि हाँ हम प्रोडक्टिवली एज अ टीम काम कर रहे हों। ठीक है, लीडर का मतलब ये नहीं होता डांटना, लीडर का मतलब ये होता है कि वो आपके रूम में है तो उनको एम्पावर्ड फील हो रहा हो। और आपको कितना दोस्त बनना है, कहाँ पे उसको एज अ गलत यूज़ किया जा सकता है, तो मतलब लाइफ एक्सपीरियंसेस, द फेलियर्स विल टीच यू अ लॉट। बी विद इंडिविजुअल्स जो कि आपसे 5 से 6 साल बड़े हैं, दे विल टीच यू अ लॉट। एंड उनके साथ 2 घंटे भी बात कर लोगे ना 1-to-1 बैठ के, बहुत सिखा देंगे आपको। तो बस
आई फील कि बेसिकली लर्निंग मेंटालिटी है आपकी। एंड आई वॉन्ट टू हाईलाइट वन थिंग अबाउट माई सेल्फ विच इज़ दैट आई फील कि एज 22 पे मैं बहुत कुछ चीज़ें नहीं जानता, मैं स्ट्रीट स्मार्ट नहीं था। और मैंने भी एक ही चीज डिसाइड करी कि हाँ मुझे लर्निंग मेंटालिटी एम्ब्रेस करनी है, एंड आई फील आई एम मोस्ट स्ट्रीट स्मार्ट बिकॉज ऑफ इट एट एज 20। जो भी चीजें अब हो रही है इट्स बिकॉज ऑफ लर्निंग मेंटालिटी। और जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स को मैं जानता हूँ, यूट्यूबर्स को मैं जानता हूँ, जो भी जिन्होंने भी सक्सेस देखा, इट कुड इवन बी एथलीट्स लाइक ड्वेन ब्रावो, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट पर आए, उन सबके दिमाग में लर्निंग मेंटालिटी बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो आपने आई थिंक लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल हाईलाइट की है, और आपसे बात करके मेरी भी लर्निंग मेंटालिटी हमेशा एक्टिव हो जाती है। अमन भाई
थैंक यू यार,
और आई होप आपने एंजॉय किया आज।
हाँ मैं तो हमेशा एंजॉय करता हूँ आपसे बात करना, और आई होप बच्चों को हमने बोर ना किया हो, आपने भी एंजॉय किया हो लाइफ में। यार बहुत बढ़िया करो, इस प्रकार का करो कि 70-80 साल की उम्र में मुड़ के देखें तो प्राउड फीलिंग आए, हाँ यार जिंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें करी है हमने। और कुछ ऐसा मत करो कि आपके अंदर कोर गिल्ट आ जाए, ठीक है, कोशिश करो कि ट्राई टू बी फेयर। मुझे तो कार मामा मैं बिलीव करता हूँ, तो ट्राई टू बी फेयर विद जितना आप रह सकें। बीच बीच में आपको स्ट्रीट स्मार्ट भी होना पड़ेगा, देखो ये ट्रू रियलिटी है, वरना आप चोट खा जाओगे। तो लिव लाइफ, अगर मैं बोलूँ लिव लाइफ, लर्न फ्रॉम लाइफ, डोंट स्टॉप, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लोग आपको रोकेंगे, उनका काम है रोकना, आप उन्हें मना करके कोई चीज़ प्रूव करके दिखाओ कि देखो जी मैंने कर दी, ठीक है, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। फ़ोन को रखो साइड में, डिस्ट्रैक्शन सबसे पहले काटो। अगर रूम गंदा होता रहेगा तो साफ, आप पोछा कितना ही लगाओ वो गंदा ही रहेगा। तो पहले खिड़कियाँ बंद करो, मोबाइल को दूर फेंको। आपको अगर इंटरनेट से सीखना है तो सही लोगों से सीखो, आपको पता हो कि कितना मेरे को सीखना है, और सीख सीख के फिर उसे लर्निंग में लाओ। 10 बार रिवाइज करो, एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूट नहीं हो पाता लोगों से, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, आपके अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, और उन चीज़ को कवर करने के लिए या तो अपने मेंबर्स, टीम मेंबर्स इस प्रकार के लिए हो जो कि उनको स्ट्रांग कर पाएं। आप इनिशियल फेज़ में हो, आपके पास टीम मेंबर्स नहीं है, तो जनाब फिर आप वेट कर रहे हो कि जब तक मेरे को एक बहुत बड़ा फेलियर नहीं मिल जाए तब आप उठोगे, तो हम उस दिन का वेट क्यों करें। मेहनत तो सबको करनी है, हर कोई 10 से 12 घंटे काम करने वाला है। प्रश्न ये है कौन सा काम आपको करना है जिसमें मज़ा आए, जिसमें आप खुद के प्रति प्राउड हो कि यार आज बढ़िया काम करके आए। आप अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एक पर्पज़ लाइफ में फुलफिल हो रहा होता है, ये अपने आप से कुछ बातें करना स्टार्ट करो। स्टार्ट आस्किंग व्हाई, क्यों करना है। हर चीज़ पैसे के लिए नहीं करनी होती, कभी कभी आप रिलेशनशिप्स को ऊपर रख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी, ये पापा ने मुझे बताया, या तो पैसे ले लो या रिलेशनशिप बना लो, दो में से एक चीज़ कर सकते हो आप। तो बस करते जाएं, मजा
आएगा। अमन भाई ने कहा स्ट्राइव टू बी 1%, आई वुड लाइक टू ऐड अ लाइन, स्ट्राइव टू बी द 1% ऑफ द 1%, फिर आप 1% में लैंड डेफिनेटली होंगे। तो थैंक यू अमन भाई, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन TRS हिंदी अगेन। आपके साथ और बहुत सारे एपिसोड्स रिकॉर्ड करने हैं, जो भी मैं सीख रहा हूँ लाइफ में वो आपको बताना है, जो भी आप सीख रहे हो मैं आपसे सीखूंगा TRS पे।
अरे मैं तो आपसे बहुत चीज़ें सीखनी है, स्पेशली आप ये कम्युनिकेशन स्किल्स, इन द सेंस एक होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, आपने खड़े होकर सेमिनार ले लिया तो ठीक है, आपकी बहुत अच्छी ओरेटरी, इसको हम क्या बोलें, इसको हम बोल सकते हैं कि आप इंडिविजुअल्स के साथ कैसे बातें करते हैं, वो बहुत अच्छा लगा मुझे आपका। और ये सीखेंगे कभी हमारा 1-to-1 मिलने का मौका मिला तो ज़रूर।
आई हैव नॉट मेट यू, वो बहुत ही वियर्ड चीज़ है, मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ अभी बिकॉज ऑफ द पॉडकास्ट, बट आपसे एक्चुअली इन पर्सन नहीं मिला हूँ। आपको मिलके शाही पनीर खाना है, दाल मखनी खानी है, तो वो
हाँ पराठे अच्छे बनाते हो, मैंने देखा था आपका प्राजक्ता वाला।
बॉम्बे आओगे तो आपको बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे, इवन दो इट इज़ नॉट एज गुड एज जयपुर और दिल्ली, बट डेफिनेटली भाई ऑलवेज वेलकम टू बॉम्बे एंड हैव फूड विद अस।
वहाँ आएंगे तो आपका फिर वड़ा पाव खाएंगे, दाल मखनी तो
दरकार। अरे डेफिनेटली, आपको बॉम्बे का बेस्ट वड़ा पाव खिलाएंगे, हमारे ऑफिस के ही पास है। ठीक है, थैंक यू अमन भाई। तो दोस्तों ये था हमारा स्पेशल पॉडकास्ट। अगर आपको इस तरह के कॉन्वर्सेशनल पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं प्लीज़ बता दो हमें कमेंट सेक्शन में, और कौन से यूट्यूबर्स को आप देखना चाहोगे द रणवीर शो हिंदी पर वो भी हमें बता दीजिए। मुझे इस पॉडकास्ट पर अलक पांडे सर को बुलाना है, खान सर को बुलाना है, जाकिर भाई को बुलाना है, टेक्निकल गुरु जी को बुलाना है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स को लाना है, सीकन भाई को लाना है इस पॉडकास्ट पर। तो बस कॉमेंट कर दो कि आपको किसको देखना है ऑन द रणवीर शो हिंदी, बता दीजिए फॉर द बेस्ट कॉन्वर्सेशन ऑन द इंटरनेट, ये इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सभी को बताइए कि इंडिया में पॉडकास्टिंग का कल्चर आ चुका है। दोस्तों नमस्ते, गॉड ब्लेस यू।